Hare Hare. बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया और मेरे लिए उनके आदेश का पालन करना जरूरी है, इसलिए मैं आ गया। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था इधर आने के पहले, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं बाबू जी अभी अभी तक ठीक है यहाँ, तो उन्होंने खींच लाया हमें यहाँ पर। एटलीस्ट मैंने कहा कि मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ क्योंकि मेरी योग्यता नहीं है कि इतना ऊपर बैठ के, क्योंकि एक कौवा जो होता है अगर उसे ऊपर बिठा भी दिया जाए तो भी वो हंस नहीं बन सकता। तो मुझे अपनी स्थिति का ज्ञान करने की कोशिश कर रहा था मैं, तो सबसे पहले मैं श्री श्राधा माधव श्रीपंचित प्रभुपाद अपने गुरु महाराज और सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा। और क्योंकि मेरे सामने मेरे बहुत ही सीनियर जो गुरु भाईजान है वो बैठे हुए हैं, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। इस वजह से दगारानंद प्रभु, इस वजह से चेतानंद गोविंद प्रभु और कई सीनियर भक्तों के नाम मैं नहीं जानता, तो क्षमा करना मुझे यदि नाम नहीं पता है, तो मैं आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। और आपका आशीर्वाद प्राप्त करके कुछ दो शब्द कहने का प्रयास करूँगा। और कथा शुरू करने के पूर्व ही एक डिस्क्लेमर रखना चाहता हूँ, एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूँ वो मेरे अपने शब्द नहीं है, वे मैंने हमारे गुरु भाई है गौरांग प्रभु जो यहाँ भी आए थे, आपने शायद उनका लेक्चर अटेंड किया रहेगा, उन्होंने क्लास दिया था दामोदर स्टेशन पे, तो उनको ही सुन के बस दोहराने का केवल प्रयास मात्र करूँगा। तो उसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो आप मुझे माफ़ करना, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप गौरांग प्रभु का धन्यवाद देना, और अगर अच्छा ना लगे तो इतनी प्रार्थना करना कि मैं जो भगवत का ये जो मैसेज है उसे एज इट इज बोलने का प्रयास कर सकूं फ्यूचर में। तो इन्हीं दो शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं कुछ दो शब्द कहने का प्रयास करूँगा। सभी को हिंदी समझ में आता है ना, कोई ऐसा है जिनको हिंदी, एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल, ऐसे कोई anyone?
हरे कृष्ण, कृपया अपने मोबाइल से बंद करके आइए प्लीज। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आपने अपने मोबाइल्स को बंद कर दें।
तो मैं हमेशा अपने आप को ये चीज रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ कि हम जब भी भक्तों के संग में आते हैं तो हमारा मूड कैसा होना चाहिए। What should be our mood? Our mood should be that of a patient who goes to hospital and not of that of a tourist who goes to a hotel. हमारा जो mood है वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई एक मरीज, एक बीमार व्यक्ति अस्पताल जाता हो, ना कि उस तरह से कि कोई व्यक्ति जो है जो होटल में जा रहा है। इन दोनों के अंदर बहुत ही अंतर है। अंतर यह है कि जो होटल में जाता है वो मनोरंजन के लिए जाता है, वो सोचता है कि मैंने पैसे दिए हैं होटल में, पेमेंट किया है तो थोड़ा मनोरंजन करूंगा, थोड़ा आनंद उठाऊंगा, उस दृष्टिकोण से वो वहां पे जाता है। लेकिन एक जो मरीज होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है, वो जब हॉस्पिटल जाता है तो ये नहीं सोचता कि उधर जाके आनंद करूंगा, मनोरंजन करूंगा, नहीं, वो सोचता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे बीमारी ने बुरी तरह जकड़ लिया है, मुझे शुद्ध होना है, मुझे ठीक होना है, और वो शुद्धिकरण के लिए अस्पताल में जाता है ये सोचकर कि दवाई, प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर मुझे बचाएंगे और जिससे मैं ठीक हो सकूंगा। तो हम सबकी भी यही अवस्था है कि हम ठीक नहीं हैं, बीमारी से झगड़े हुए हैं, और ऐसा जो भक्तों का संग हमें श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से प्राप्त हुआ है, जिन्होंने ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसमें सभी मरीजों को आमंत्रण दे रहे हैं कि आ जाओ आपको ठीक किया जाएगा यहाँ पर। तो उसी मूड से हम चाहे कहीं भी जाए, चाहे छोटे सेंटर में जाए, चाहे बड़े सेंटर में जाए, या किसी भी भक्त से मिले, तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं शुद्धिकरण के लिए जा रहा हूँ, मनोरंजन के लिए नहीं। कभी कभी मनोरंजन भी होता है साथ साथ में, क्योंकि हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो मनोरंजन ही है। जैसे भगवान प्रभु यही बोल रहे थे एक व्यक्ति ने श्रीला प्रभुपाद जी से पूछ लिया, अरे आप दिन रात हरे कृष्ण जप करते रहते हो, मनोरंजन के लिए क्या करते हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा, अरे हमारा सारा का सारा प्रोसेस ही मनोरंजन का है, हम मनोरंजन के अलावा दूसरा कुछ करते ही नहीं है। लेकिन हमारा जो मूड है वो ये होना चाहिए कि हम शुद्धिकरण के लिए जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो सबसे बड़े डॉक्टर है, भक्तगण जो है वो डॉक्टर है, और हमारा प्रिस्क्रिप्शन है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और जो पुस्तकें श्री प्रभुपाद जी ने लिखी है, और हमारी जो दवाई है मेडिसिन वो है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यदि हम भक्तों का आश्रय लेंगे, डॉक्टर का आश्रय लेंगे और इस दवाई को नियमित रूप से सेवन करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण बहुत ही जल्दी होगा, तीव्रता के साथ होगा। और ये हमारी दवाई जो है बहुत पावरफुल है। एक बार प्रभुपाद जी से ने किसी से कह दिया कि अरे प्रभुपाद जी आपके मंदिर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मंदिर में घंटी कहाँ है? बहुत अच्छे बड़े बड़े मंदिर बनाए लेकिन मंदिर में घंटी नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा, हमारा जो घंटी है वो हमारे दांतों के बीच में ये जीवा है और जब बजता है तो केवल एक ही आवाज निकलती है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, भक्त पद धूली भक्त पद जाल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। ये जो भक्ति की जो तीन महाबल है वो ये है, भक्त पद धूली के भक्तों का जो धूल है वो, भक्त पद जाल, जल मतलब जिनको जो जल जिन्होंने भक्तों के चरणों को धो दिया है, और भक्त भुक्त अवशेष जो भक्तों का जो चबाया हुआ जो प्रसादम है वो, इन तीन में बहुत महाबल है, बहुत ही ताकतवर है। ये दवाई सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो ये दवाई यहाँ वितरण करने के लिए ये गौरांग प्रभु ने जो खाया है उसी को मैं वापिस चबा के देने की कोशिश करूँगा। तो क्योंकि अभी अगले हफ्ते कार्तिक मास शुरू हो रहा है 5 अक्टूबर से और दामोदर अष्टकम हम उसमें पढ़ते हैं, तो हमें उचित जाना कि कुछ दामोदर अष्टकम को समझने का प्रयास करें, कुछ उस पर चर्चा करेंगे। तो हम बहुत ही जल्दी एक बार ये पूरा दामोदर अष्टकम गाएंगे और उसके बाद एक एक उसके शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे कि दामोदर अष्टकम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और इस दामोदर अष्टकम से ये जो सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है और श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने इसके ऊपर अपनी टीका लिखी है, तो उससे हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे।
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले भजमानं
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले भजमानं
यशोदाभियोलुखलाघवमानम्
मोहर नेत्र युग्मं मृजन्तं करां भोजयुग्मेन सान्तं चिन्तितम्।
Hare Krishna.
सुंदर रचना है जो पद्म पुराण में आई है। शौनक ऋषि और नारद मुनि के साथ संवाद करते हुए श्री सत्यव्रत मुनि ने इसकी रचना की है। और ये जो 8 श्लोक है ये बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये नित्य लीला है जो हमेशा होते रहती है। और इसका जो मीटर है, जो स्वर है, उसको भुजंग प्रायता कहते हैं। भुजंग प्रायता मतलब ये सर्प की तरह चलता है, कभी स्वर ऊंचा जाता है, कभी नीचा जाता है। हमको तो स्वर गाना आता नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से इसको गाया जाता है, और इसीलिए हम दामोदर अष्टकम हमेशा गाते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं नमामि ईश्वरम, नमामि मतलब प्रणाम कर रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, हम प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं। तो कोई भी कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान का और वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो सबसे पहले सत्यव्रत मुनि कहते हैं नमामि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और क्या कहते हैं, नमामि ईश्वरम, सबसे पहले ईश्वर शब्द से भगवान को संबोधित कर दिया। क्योंकि ये जो दामोदर लीला है इसमें हम देखेंगे कि भगवान जो है वो एक नन्हे शिशु के रूप में बाल लीला कर रहे हैं, तो उनकी इन लीला क्रीड़ा को देखकर कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, या सामान्य व्यक्ति इसको सामान्य मान लेगा कि ये क्या लीला कर रहा है। क्योंकि इस लीला में हम आगे देखेंगे कि भगवान जो है वो एक नन्हे शिशु के रूप में माता यशोदा के साथ जो लीला कर रहे हैं उसमें वो माता के डर से भाग रहे हैं, माता उसके पीछे पीछे भाग रही है, फिर वो रोने लगते हैं, अश्रुपात हो रहा है, आंखें मल रहे हैं, और माँ से डर के वो भागे, माँ पीछे पीछे भागी, फिर वो भागे, फिर माँ भागी, और फिर माँ ने उनको पकड़ लिया और डंग देने का प्रयास किया। तो ऐसा सब देख कर हमको लगेगा कि मैंने मेरे बचपन में भी कुछ ऐसी बातें देखी थी, कहीं मेरे बारे में तो ये चर्चा नहीं हो रही है। तो कहते हैं नहीं जी, ईश्वरम। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये ईश्वर के बारे में कर रहे हैं, और इसीलिए भगवान कृष्ण की बाल लीला को अति मानवीय घोषित करने के लिए पहले उन्हें ईश्वर शब्द से संबोधित कर दिया। तो वे कह रहे हैं कि आगे जो कुछ भी लीला होगी उसमें आप ईश्वर शब्द जोड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान की जो लीला है उसमें हम देखेंगे कि भगवान माँ से भयभीत होकर भागे पर ईश्वर है, रोने लगे पर ईश्वर है, डर रहे हैं पर ईश्वर है। तो जो कुछ भी एक एक शब्द इस दामोदर अष्टकम का हम गाएंगे, हम पढ़ेंगे, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी चर्चा हो रही है वो ईश्वर के बारे में। नमामि ईश्वरम, सच्चिदानंद रूपम ईश्वरम, लसत कुंडलम ईश्वरम, रुदंतम मुहूर् नेत्र ईश्वरम, सांतक नेत्रम ईश्वरम। सो हर शब्द में ईश्वर जोड़ना नहीं भूलिएगा, वो कहते हैं। नहीं तो जैसे हम आगे जाएंगे, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई लोग जो है वो सीधा 10वें स्कंद पे जाने का प्रयास करते हैं भगवान को समझे हुए बिना। तो जो भी उस पर जाने का प्रयास करेगा वो भ्रमित हो जाएगा, मात खा जाएगा, उसकी जो भारी जड़ बुद्धि है वो समझ नहीं पाएगी कि ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए भगवान की जब लीला को हम समझने का प्रयास करें तो पहले भगवान की शक्तियों को समझने की आवश्यकता है। और संपूर्ण जगत तीनों लोकों की शक्ति भगवान श्री कृष्ण में है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, ब्रह्मा जी कहते हैं। और ईश्वर की कई षडैश्वर्यपूर्ण जो भगवान है, ईश्वर के कई डेफिनेशन दिए हुए हैं, हम उस सब्जेक्ट मैटर आज का नहीं, इसलिए उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है समझना कि जो कुछ भी हम चर्चा करेंगे उसमें ईश्वर शब्द लगाना न भूले। तो दामोदर अष्टकम हम कभी भी गाएंगे तो समझना चाहिए कि हम जो भी चर्चा कर रहे हैं और आगे जो भी वर्णन आएगा वो भगवान के बारे में है, वो ईश्वर के बारे में है, ये सामान्य नहीं है। तो आगे मुख्य और गौण, ये दो प्रकार के गुणों का वर्णन हुआ है, अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जब भी किसी का परिचय दिया जाता है तो पहले उसके जो मुख्य लक्षण है वो बताए जाते हैं और फिर गौण लक्षण माने जाते हैं, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी। तो प्राइमरी लक्षण उनका क्या है, यहाँ बता दिया कि वो ईश्वर है वो जिनका सच्चिदानंद रूप है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो उनका वो श्याम घन जो है वो है सत चित और आनंद के श्रोत्र हैं वो पूरे, इटर्नल फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। तो ये जो भौतिक जगत का जो जीव है वो उसके पास सच नहीं है, चित्त नहीं है, और वो निरानंद है, उसमें कुछ आनंद नहीं है। तो बताते हैं कि हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो सच्चिदानंद रूप है, और अपने रूप के बारे में कोई भी व्यक्ति छल नहीं कर सकता। तो पहले बता दिया कि ये भगवान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ईश्वर के बारे में बात कर रहा हूँ, और उन ईश्वर के बारे में बात करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप जिनका है, जो सभी कारणों के कारण है, जो आदि है, अनंत है, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो जब नहीं तो कोई कहेगा कि अगर सच्चिदानंद रूप के बारे में नहीं बताएंगे तो जब ईश्वर की चर्चा आएगी तो कोई भी कहेगा, कई लोग खड़े हो जाएंगे और हाथ खड़े करेंगे, कह रहे मैं भी ईश्वर हूँ, मैं भी ईश्वर हूँ, मेरा सरनेम भी ईश्वर है। तो इस तरह के लोग बहुत आ जाएंगे सामने। तो बताते हैं कि ये जो सच्चिदानंद रूप है ये सामान्य नहीं है। जैसे एक बार प्रभुपाद अफ्रीका में एक लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने आरंभ में कह दिया कि कृष्णा इज ब्लैक, तो सभी लोग मुस्कुराने लगे, सब अफ्रीकन वासी मुस्कुराने लगे। तो प्रभुपाद ने कहा नॉट लाइक यू, ये अलग रूप है, ये जो जिस रूप रंग और लावण्य की बात हो रही है ये अलग है, ये हटके है, ये हमारा जैसा नहीं है। तो इसीलिए कई बार जब कोई चर्चा भी की जाती है तो हम हमारी सीमित बुद्धि और सीमित मस्तिष्क से उसको सोचने का प्रयास करते हैं और उसे समझ नहीं पाते और यहीं पे हम मात खा लेते हैं। तो इसीलिए एक बार प्रभुपाद जी और प्रवचन कर रहे थे तो उसमें कह रहे थे that I am not this body, I am soul। हमें ये समझना है, जानना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। तो उन लोगों को लगा कि शायद प्रभु जी जो स्वामी जी बैठे हैं वो आत्मा है, हम लोग तो शरीर ही है। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है, इतने वर्षों की भक्ति करने के बाद भी हमें पूरी तरह से ज्ञात नहीं होता है कि हम ये शरीर है कि नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने उनसे कहा कि प्रभुपाद जी बार बार आप क्यों यही बात बता रहे हो दैट यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर द सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर द सोल, कुछ और कहिए। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा हैव यू अंडरस्टूड यू आर नॉट दिस बॉडी, तो उसने कहा नॉट एग्जैक्टली प्रभुपाद, प्रभुपाद इसलिए बता रहा हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है। तो उनका मुख्य रूप है कि सच्चिदानंद रूप है उनका, और उनका गौण रूप क्या बता रहे हैं, लसत कुंडलम। लसत कुंडलम का मतलब है कि भगवान के कान में जो कुंडल है वो झूम रहे हैं। तो कुंडल का मतलब होता है एक आभूषण, और आभूषण का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारे शरीर के अंग की शोभा बढ़ाने के लिए, अपने रूप लावण्य को सुशोभित करने के लिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है। तो कोई लसत कुंडलम जान के ये सोचेगा कि अरे कृष्ण का जो आप शरीर बोल रहे हो वो इतना सुंदर नहीं है कि आभूषण लगते हैं उसको, क्या बात है ये। तो इसीलिए उद्धव जी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि भगवान का जो रूप जो लावण्य जो सुंदरता है वो तो भगवान को मैंने बहुत ही करीब से देखा है, और भगवान को अपने रूप से विस्मित होते हुए मैंने स्वयं देखा है। और इसीलिए वो कहते हैं कि परम पदम भूषणम भूषणांगम, मतलब भगवान का जो एक एक अंग प्रत्यंग है वो भूषण के लिए भी भूषण है, मतलब आभूषण के लिए भी आभूषण है। जैसे जैसे हमने अगर किसी ने हाथ में कोई कंगन पहना है या कान में कुंडल पहना है तो कोई बोलेगा अरे इस कंगन की वजह से तुम्हारा हाथ कितना सुंदर लग रहा है और इस कुंडल की वजह से तुम्हारा कान कितना सुशोभित हो रहा है। लेकिन भगवान लसत कुंडलम, जब भगवान कान में कुंडल धारण करते हैं तो उसको देखकर कोई कुंडल से कहेगा कि यार कुंडल क्या कान धारण किया है तूने, भगवान का, क्योंकि भगवान के संग में आया है। तो क्योंकि कुंडल भगवान के कान के संग में आया है उसकी शोभा बढ़ जाती है, और उस कुंडल की वजह से भगवान की का जो रूप लावण्य है वो नहीं निखर रहा है, लेकिन कुंडल का कान के संपर्क में आने से उसका जीवन सार्थक हो रहा है। तो इसी तरह हम जीव है, और हम अगर भगवान से येन केन प्रकारेण जुड़ जाएं तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। नहीं तो हम कितने भी, हमारे पास कितनी भी ऊर्जा है, कितनी भी शक्ति है, उसका कोई, उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन सभी कुछ खत्म ही होना है, वो सभी जानते हैं। इसीलिए हमें कृष्ण को केंद्र में लाना है, कृष्ण से जुड़ जाना है, और जैसे हम कृष्ण से जुड़ जाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। इसीलिए आगे कहते हैं गोकुले भ्रजमान, लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम, और यही चीज गोकुलवासियों ने किया है। गोकुलवासियों ने क्या किया है कि कृष्ण को अपने सेंटर में रखा है, अपने केंद्र में रखना है, अपने मध्य में रखा है, और ये केन प्रकार कुछ भी वो करते थे कृष्ण को नहीं भूलते थे। सोचते थे तो कृष्ण के बारे में, गाते थे तो कृष्ण के बारे में, बात करते थे तो कृष्ण के बारे में, अगर कोई राक्षस अटैक भी करता था तो सबसे पहले कृष्ण के बारे में ही सोचते थे, कृष्ण कृष्ण महाभाव। सो बताते हैं कि ये जो गोकुल के निवासी है, सामान्य दृष्टि से लगेगा कि ये घरेलू कार्य में लगे हैं, कृषि कार्य में लगे हैं और इस तरह के कार्य कर रहे हैं, तो हमें और उनमें अंतर क्या है? सिर्फ अंतर इतना है कि हम कुछ भी कार्य करें, कृष्ण हमारे केंद्र में नहीं है, लेकिन गोकुल निवासी जो है कृष्ण उनके केंद्र में है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, यावत रागा दयस्तेन यावत कार ग्रहं ग्रहं यावत मोह मृणिगणो तावत कृष्ण न तेजना। वह कहते हैं कि ब्रजवासियों की लीलाओं को देखकर कोई सामान्य व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, मात खा सकता है, जैसे ब्रह्मा जी स्वयं हो गए थे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान है ये, कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये कैसी कैसी लीलाएं कर रहा है, दूसरों का झूठा खा रहा है और बंदर की पूंछ खींच रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, इस तरह की लीला देख के वो भ्रमित हो गए और उनके चार मस्तिष्क थे, चार मस्तिष्क से भी समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। हमारे पास तो एक ही है, उसमें भी एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा दैट यू आर ब्रेन वॉशिंग अवर चिल्ड्रन, तो प्रभुपाद जी ने कहा अरे ब्रेन वॉशिंग के लिए पहले ब्रेन होना चाहिए। जिस व्यक्ति को यही नहीं मालूम है कि आत्मा और शरीर में अंतर क्या है, उसके पास ब्रेन है किधर? और जब ब्रेन है ही नहीं, और कुछ ब्रेन अगर तुम्हारे पास है भी तो उसमें गोबर भरा हुआ है, तो हम उसको साफ कर रहे हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क है उसकी कोई क्षमता नहीं है। तो ये जीवन सामान्य लगता है लेकिन फिर भी हम मात खा जाएंगे। इसके लिए बताते हैं कि अगर हमारे जीवन में कृष्ण न हो तो रागा दयस्तेन, मतलब ये जो भी हमारी इच्छाएं कामनाएं जो भी कुछ है वो एक चोर का रूप ले लेगी और ये जो हमारी चेतना है उसको चुरा लेगी। और चोर बनने के बाद क्या हो जाएगा, उसको पकड़ते कहाँ डालते, जेल में डाल देते हैं। कार ग्रहम ग्रहम, तो बताते हैं कि जिस घर में भगवान न हो, जिसके केंद्र बिंदु भगवान न हो, वह घर क्या है, ग्रहम, वो कार ग्रहम हो जाता है। कार ग्रहम मतलब कारागृह, कारागृह मतलब जेल, वो जेल बन जाता है, वो जेल के समान हो जाता है। तो इसीलिए शब्द आता है भवन, भवन अर्थात जिसमें भगवान हो। और जब अगर भव मतलब भगवान हट जाते हैं तो क्या बच जाता है, वन। और हम जानते हैं कि वन में कौन रहते हैं, तो पशुतुल्य जीवन से अगर ऊपर उठना है तो हमें भगवान की शरण में जाना है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे घर में कार आ गया तो कार ग्रहण हो जाएगा, घर और कार दोनों आ गया हमारे पास, तो इतना पर्याप्त है। तो ये पर्याप्त नहीं है। एक बार एक उद्योगपति प्रभुपाद जी के पास आए और कहने लगे, प्रभुपाद जी मेरा एक फैक्ट्री जयपुर में है, एक दिल्ली में है, एक आगरे में है, एक यहाँ एक वहाँ है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा करो वो सारा फैक्ट्री हमको दे दो और चैन से सो जाओ। तो घबरा गया, बोला ये क्या कह रहे हैं। तो कहने लगा नहीं स्वामी जी मैं चलता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा इसका एड्रेस ले लो। तो बोला नहीं स्वामी जी मेरे को एड्रेस मालूम है, मैं आ जाऊंगा। प्रभुपाद का हम भी आना चाहते हैं, एड्रेस दे दो। और वो भाग गया। तो भागने के बाद प्रभुपाद जी अपने शिष्य से बोले कि देखो कितना मोह है इसको, इसको लगता है जितना ज्यादा मैं बटोरता जाऊंगा उतना ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सुख और शांति का पैसों के साथ कोई संबंध नहीं है, सुख और शांति का सीधा संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। भगवान कहते हैं कि सच्ची शांति और सच्ची सुख पाना चाहते हो तो भगवान से जुड़ना आवश्यक है। जिस तरह गोकुल के निवासी भगवान से जुड़े, उनको केंद्र में रखा, उसी तरह अगर हम भी भगवान से जुड़ जाएं, भगवान को केंद्र में रखें, तो हमें और गोकुलवासियों में कोई फर्क नहीं होगा। पर ऐसा करना बहुत बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब ये समझा और जब वो ब्रह्म विमोहन लीला हो गई, ब्रह्मा जी चक्कर में खा गए और फिर वो सोचने लगे कि ये इन लोगों का क्या भाग्य है, जैसे बंदरों का क्या भाग्य है, ब्रजवासियों का क्या भाग्य है कि वो भगवान के साथ लीला कर रहे हैं। तो कहने लगे अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले अहो भाग्य नंद गोप व्रजोक साम, बोले ये बरसाना वासी जो है, ये नंद गांव के वासी जो है, इनके कितने भाग्य है कि वो यन मित्र, बताते हैं कि भगवान के साथ मित्रता कर रहे हैं, उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, उनके साथ कार्य कर रहे हैं, और वो जो पूर्ण ब्रह्म है, वो पूर्ण ब्रह्म के साथ वो इस तरह की लीला क्रीड़ा कर रहे हैं। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं रघुपति उपाध्याय, उन्होंने कहा है श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भारत मन्ये भवन्ति भयभीतम यस्या लिंदे पर ब्रह्म यस्या लिंदे पर ब्रह्म। बोले के लोग महाभारत श्रुति पुराण ये सब पढ़ते हैं किसके कारण, भय के कारण, लेकिन मैं उसके कारण नहीं पढ़ता। मैं क्यों पढ़ता हूँ कि यस्या लिंदे पर ब्रह्म अहम इह नंदम वंदे यस्या लिंदे पर ब्रह्म। बोले के मैं उस नंद महाराज के कोटियार जो है उसका, उसको प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर पर ब्रह्म एक छोटे से नन्हे से शिशु के रूप में बाल लीला और क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इस तरह नंदगांव के जो ब्रजवासी हैं उनका उनका सौभाग्य है। तो आगे फिर सत्यव्रत मुनि अभी एक लीला का वर्णन कर रहे हैं, जैसे सच्चिदानंद रूप मतलब उनका रूप का वर्णन हो गया और लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमाना उनके गुण का वर्णन हो गया कि वो किस तरह से ब्रजवासियों को कर रहे हैं। अभी सत्यव्रत मुनि लीला पर आ रहे हैं और लीला सुनाना आरंभ करते हैं। यशोदा भियोलु खला धवमानम परामृष्टम अत्यंत तो दृत्य गोप्या। तो बताते हैं कि यशोदा भियोलुख मतलब यशोदा के भय से भगवान श्री कृष्ण भाग रहे हैं। वह जिससे साक्षात मूर्तिमान भय भागता है वह एक नन्हे से शिशु के रूप में भगवान यशोदा के भय से भाग रहे हैं। क्यों क्यों भयभीत हुए? क्योंकि यशोदा माँ चाहती थी कि कृष्ण सुखी रहे, कृष्ण संतुष्ट रहे। और लोग शिकायत किया करते थे यशोदा माता से आकर कि क्या तुम्हारा कृष्ण हमारा माखन खा जाता है। कृष्ण जो है वो गोरस के बड़े शौकीन है। जैसे गोरस मतलब क्या, जैसे माखन नवनी दूध घी मक्खन ये जो सब है ये कृष्ण बहुत चाहते हैं इसको। तो वो जाते हैं और दूसरों के घर से जा जाकर माखन चुराने की लीला करते हैं। तो गोपी आके उलाहने देती है कि ये क्या तुम्हारा लाला बार बार आके हमारा माखन चुराता है। तो यशोदा माता परेशान हो जाती है कि क्या हो रहा है। तो यशोदा माता जी सोचती है और भगवान से कहती है कि अरे लाला हम अपने घर में इतना उत्कृष्ट प्रकार का माखन बना के तुमको खिलाते हैं लेकिन फिर भी तुम क्यों दूसरों के घर में जा जाके माखन खाते हो। तो कृष्ण ने उत्तर दे दिया अरे माँ घर पर बैठ कर नहीं खाना चाहता, कुछ कमा के खाना चाहता हूँ। तो यशोदा माता परेशान हो गई, बोले ये क्या हो रहा है। तो बोले लगता है कि मेरे जो सेवक है इतने सारे ये अच्छा माखन नहीं निकाल रहे हैं तो ये माखन मुझे स्वयं निकालना पड़ेगा। तो बताते हैं कि नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थी और उस 9 लाख गायों में से कुछ गाय बहुत ही विशेष प्रकार की थी, बहुत ही स्पेशल थी, जिनको पद्मगंधा गाय कहा जाता था। तो उन पद्मगंधा गाय से जो दूध निकलता था वह भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो यशोदा माता एक दिन सोची कि मैं भगवान के लिए मिठाई बनाऊं। तो उन्होंने दूध लिया और उसको उबालने के लिए रखा और फिर भगवान कृष्ण आए और यशोदा से स्तन्यपान करने लगे, उनका दूध पीने लगे। तो बताते हैं कि ब्रज के अंदर जो कुछ भी है वो चिन्मय है, सारा का सारा ब्रजधाम चिन्मय है, उसके कण चिन्मय है, उसकी पत्ता उसकी लता पानी सब कुछ चिन्मय है। तो दूध जो है वह भी एक पर्सनैलिटी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि दूध ने सोचा कि अरे कृष्ण अपनी मैया का दूध पी रहा है तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा जीवन तो नष्ट हो गया, मेरा जीवन तो कुछ काम में नहीं आया, अगर मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो क्या लाभ, इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर दूं। तो दूध ने क्या करना शुरू किया, आत्महत्या। और दूध आत्महत्या कैसे कर रहा है, वो उफन रहा है, उबल रहा है, उबल के वो बाहर आ रहा है, सिगड़ी से बाहर गिरने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे मैया ने आवाज सुनी देखा कि अरे इतना पद्म गंदा गायों का जो दूध है ये दूध नीचे गिर जाएगा, तो सोची कि दूध भी जो है वो कृष्ण की सेवा के लिए है। तो जो कुछ भी वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए होती है उसका हमको केयर करना चाहिए। तो मैया ने लाला को नीचे रखा और गई दूध संभालने के लिए। तो दूध तो उन्होंने संभाल लिया लेकिन भगवान को गुस्सा आ गया, कृष्ण को गुस्सा आ गया, बोला अरे मेरे को छोड़कर कैसे चली गई है, जीवन में नंबर वन प्रायोरिटी मैं हूं कि नहीं, अभी मैं सबक सिखाता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि वहां जो मटका रखा था उसको फोड़ दिया, फिर लकड़ी ली जितना माखन था वो माखन गिरा दिया, इधर उधर खा लिया और अपने बंदरों को दोस्तों को बांटने लगे। और इस तरह से जब करने लगे तो माता वापस से आई देखने के लिए जरा क्या हुआ। पर देखिए कि जो यशोदा माता की जो चेतना है वो चेतना क्या है कि भगवान कृष्ण के लिए फर्स्ट क्लास दूध उन्होंने निकाला पद्मगंधा का और उसको बचाने के लिए गई थी। तो बताते कि यशोदा माता की चेतना यह है कि भगवान कृष्ण को मैं जो कुछ भी दूंगी वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, एकदम नंबर वन। मगर सामान्य लोग जो होते हैं और हमारी तरह जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जो फर्स्ट क्लास है वो मेरे लिए है और बाकी जो बच जाए वो कृष्ण का। जैसे गाड़ी हम चला रहे हैं, बहुत चलाक चला के 50,000 माइल चला दिया गाड़ी को, घस घस के धक्का मार के भी जब गाड़ी नहीं चलती है तो सोचते चलो अभी इस्कॉन को डोनेशन में दे दो। वो लोग अपना संकीर्तन वैन में यूज करेंगे, उससे संकीर्तन करेंगे। जमीन है उसमें भूत प्रेत है तो बोलते हैं अच्छा ये बहुत संकीर्तन करके भूत भगा देते हैं इनको दे दो। तो कई कई बार इस्कॉन को ऐसा मंदिर ऐसा जगह मिला है, प्रभुपाद जो सीरियल है उसमें आप देखोगे कि प्रभुपाद जी को भी इस तरह का एक मकान मिला था जिसमें भूत था, भूताहा मकान था वो, और प्रभुपाद जी ने उस भूत को भगा दिया था। तो बोले नहीं ये लोग भूत भगा देते हैं और कभी कभी भूत जैसे ही लगते हैं। तो एक बार गौरांग प्रभु अपने मंदिर की तरफ जा रहे थे चौपाटी ग्रैंड रोड स्टेशन से उतर के, तो भगवा वस्त्र पहने थे, ब्रह्मचारी के ड्रेस में थे, तो उधर से एक औरत निकल रही थी और उसका छोटा सा बच्चा साथ में चल रहा था। तो उसने देखा कि ये तो कुछ अजीब तरह का व्यक्ति लग रहा है, तो उसने पूछा कि माँ ये कौन है? तो माँ ने उससे कहा बेटा ये भूत है। तो आराम रो चक्कर में खाएंगे, बोले ये क्या हो रहा है, भूत बता रहे। बोला ऐसे अगर बच्चों को शिक्षा देंगे तो आगे चल के क्या होगा। तो इस तरह के लोग है। तो बोले दे दो हमारा, मतलब जो हमारी जवानी है उसको हम पूरा तरह से पहले एंजॉय कर दो, और फिर जब बुढ़ापा आएगा तब हम भगवान कृष्ण के पास चले जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्रज्ञो, कि सर्वश्रेष्ठ जो है वो भगवान को देना चाहिए। मतलब क्या, सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ आयु, सर्वश्रेष्ठ धन द्रव्य, जो कुछ भी हो भगवान के लिए सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जब समय की बात आती है और हम कहते हैं कि मैं भक्त हूँ, कृष्ण मेरे जीवन में प्रधान है, सबसे पहले मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ, लेकिन मैं भगवान का नाम जपता हूँ रात को 9:30 बजे, भगवान मेरे लिए प्रायोरिटी है, लेकिन मैं भगवान का नाम जपता हूँ 9:30 बजे, जब मन हमारा शांत हो जाए और फिर बिस्तर लगाकर शांति के साथ मैं बिस्तर को देखते हुए हाथ में जप माला लिए हुए इस तरह से मैं बिस्तर को देखता हूँ और लगता है कि अभी बस मन में शांति है, भविष्य उज्ज्वल है, और वो बिस्तर को देखते हुए मैं जब जप करता हूँ और ऐसा गिरता हूँ कि ओ हो क्या मजा आता है। तो इस तरह का अगर कोई जप करेगा और इस तरह की अगर कामना करेगा तो हमारी भक्ति बहुत आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें विचार करना चाहिए कि अगर बेस्ट कृष्ण को देना है तो सुबह का समय देना है, सुबह उठना चाहिए। तो हमें ये सब सोचना चाहिए, मैं अपने आप के लिए भी बता रहा हूँ कि ये सब अगर मैं कहता हूँ कि कृष्ण मेरे लिए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि वो दिन कब आएगा जब मैं कृष्ण का वेणुवादन सुनूंगा, कृष्ण की बांसुरी सुनूंगा, तो गौरांग रूप बताने लगे कि वेणुवादन बहुत दूर की बात है, पहले अलार्म की पहले अलार्म का घंटी सुनना पड़ता है। जब अलार्म का घंटी बजता है तो अंधेरे में हाथ पैर मारकर कुछ उसको चुप करा देते, कह रहे नालायक चुप, गलत समय पर बज रहा है, तू क्यों अभी बज रहा है। तो बताते हैं कि जब घड़ी का अलार्म मीठा लगना लगे तब जाके हमको समझ में आएगा कि हाँ अभी वेणुवादन मीठा लगेगा, लेकिन जब अलार्म ही अगर मीठा नहीं लगता है तो वेणुवादन हमारे लिए बहुत दूर है। तो पहले हमें उसकी आवाज सुननी पड़ती है। तो बताते हैं कि जब ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे, जब नींद भी कसकर आती है एकदम, और तभी अगर भगवान के लिए कुछ सेवा करे, कुछ भगवान की सेवा में लग जाए, तो भगवान भी देखते हैं कि देखो मेरे लिए कितना प्रयास कर रहा है, और भगवान तभी। तो बताते हैं कि यशोदा अर्थात वो जो अपने जीवन में कृष्ण को प्रधान दे, इसीलिए जो भी बताते हैं एक्चुअली दूध जो होता है 9 लाख गायों का, वो 1 लाख गायों को पिलाया जाता है, फिर वो 1000 गायों को पिलाया जाता है, फिर कुछ 1000 गाय और कुछ 100 गायों को पिलाकर जो दूध निकलता है वो दूध बेस्ट दूध होता है, वो भगवान कृष्ण को देते हैं। तो बताते हैं कि दूध जब उबल रहा था, मैया बचाने के लिए गई, कृष्ण ने मटका फोड़ दिया, मैया वापस आई, देखिए अरे क्या हो रहा है सब। तो मैया समझ गई कि कृष्ण की चाल है, हाथ में एक लकड़ी लेके घूमने के लिए गई, पकड़ने के लिए गई कृष्ण को। तो बताते हैं कि कृष्ण बाहर जाकर क्या कर रहे थे कि अपने जो बंदर मित्र है उनको माखन खिला रहे थे सबको। तो बताते हैं कि जो बंदर भी है ये बड़े विशेष बंदर है। हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि पूर्व जन्म में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आए थे तो बंदरों की सहायता से उन्होंने रावण का संहार किया था, और वो बंदरों के साथ घूम रहे थे, और बंदरों के सानिध्य में घूम रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी महाराज बहुत ही अच्छा श्लोक कहते हैं, किम चित्रमच्युत ततैव ततशेष बंधो दाशेषु अनन्य शरणेषु यदात्व सत्वतम यो रोचयत सह मृगै स्वयं ईश्वराणां श्रीमद् किरीट तट पीड़ित पाठ पीठ। बताते हैं कि भगवान रामचंद्र जो है वो कितने दयालु है, उनके दया की बात कर रहे हैं। बताते हैं कि वो भगवान रामचंद्र जिनकी इतनी शक्ति थी कि कोटि कोटि देवता अपने जाजुल्यमान मुकुट को लेकर उनके चरणों में रखते थे, ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवतागण भी अपना मुकुट उतार के भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में रखते थे, और उन सभी विभूतियों के जो मुकुट थे वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में रहते थे। इतना आदर, इतना सम्मान, इतनी शक्ति थी प्रभु रामचंद्र की। लेकिन प्रभु रामचंद्र कैसे हैं, किम चित्रम अच्युत, बताते कि किसी को भी अपना बंधु स्वीकार कर लेते हैं, केवल एक योग्यता देखते हैं, दासेषु अनन्य शरणेषु, कि कोई भी उनका दास बन गया, उनकी अनन्य शरण उन्होंने ग्रहण कर ली तो भगवान बस खुश हो जाते हैं। और उसी तरह ये जो वानर थे ये जब भगवान रामचंद्र जी के सानिध्य में आ गए थे तो वो उनके साथ घूमते थे और उनके साथ विहार कर रहे थे। अब बताते कि देखिए भगवान रामचंद्र जी की भी कैसी लीला है कि वानरों के साथ घूम रहे हैं और भगवान जिनके चरणों पर इतने बड़े बड़े देवता अपना मुकुट रखते थे वो स्वयं शक्तिशाली भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो वानरों के साथ घूम रहे हैं। तभी आप सोचिए कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बहुत शक्तिशाली, बहुत धनवान, समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है, वो कोई मीटिंग में जाए या कहीं जाए और बंदर को साथ में लेके जाए, कैसा लगेगा ना? फाइव स्टार होटल में उसका मीटिंग है और साथ में बंदर को भी लेके जा रहा है और सब लोग टाई कोट पहनकर बैठे हैं मीटिंग के अंदर और देखिए साथ में बंदर भी बैठा है और कोई पूछेगा कौन है ये, कि मेरा एसोसिएट है, क्या करेगा, मुझे कंसल्टेंसी देगा। सोचो तो लोग बोलेंगे अरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, धंधा बंद करो, इससे कैसा पागल आदमी है, बंदर को लेके आ रहा है। बताते लेकिन वही प्रभु रामचंद्र बंदरों से विचार विमर्श कर रहे हैं, उनका परामर्श ले रहे हैं, उनकी उनका कंसल्टेंसी ले रहे हैं, पूछ रहे हनुमान जी को अच्छा अभी सीता माता को कैसे ढूंढे, रावण को हम कैसे देखे, लंका किधर है, किस दिशा में जाए, किस दिशा में हम बानरों को भेजे, इस तरह से उनसे सुझाव ले रहे हैं। तो बताते हैं कि इतने इतना सब भगवान उनके लिए कर रहे थे और इतनी सहायता की बंदरों ने भगवान की कि भगवान रामचंद्र पूर्णतया उनके कृतज्ञ हो गए और श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि देखो इस लीला में मेरी कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं, धन का अभाव है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं कर सकता, कुछ खिला पिला नहीं सकता, तो इसलिए आप नेक्स्ट युग में आ जाना, अगले युग में आ जाना और जो भी खिलाने पिलाने में मैंने कमी बाकी रखी है वो नेक्स्ट युग में इंटरेस्ट के साथ पूरा कर दूंगा। तो ये बात सोचकर यदा कदा भगवान श्री कृष्ण बंदरों को माखन खिला देते थे कि ले खाओ खाओ करके, और कई बार जब गोपियां उलाने देने आती थी तो इतना माखन खिलाते थे बंदर को कि बाद में खाने की इच्छा नहीं होती थी और वो माखन बंदर भी थूक देते थे, तो गोपी को बोलते थे देखो तुम्हारा माखन कितना थर्ड क्लास है, बंदर भी फेंक देते हैं। तो इस तरह के तो बताते हैं कि जब बंदरों के साथ जब खिला पिला रहे थे तो पीछे से यशोदा माता आई और एक बंदर ने देखा, लोग कृष्ण समझ गए कि मैया पीछे से आ रही है और भागने लगे। तो जैसे ही कृष्ण भागे माता पीछे पीछे भागने लगी। तो ये वर्णन आता है परामृष्टम अत्यंत ततो धृत्य गोपिया, कि भगवान कृष्ण भागने लगे और माता यशोदा उनके पीछे पीछे भागने लगी और पीछे भागते भागते कृष्ण जो है वो यशोदा माता से परास्त हो गए। बताते हैं कि वो भगवान जिसको योगी अपने मन से, अपनी बुद्धि से या किसी भी चीज से पकड़ नहीं पाते, उस भगवान जो सबसे तेज गति जिनकी है, उनको माता यशोदा ने परास्त कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हमें समझने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में विजयी होना चाहता है, सोचता है कि नहीं मैं भागूं और मैं सबसे आगे निकलूं, कोई मुझे पकड़ ना पाए। पराजित होने की इच्छा किसी के मन में नहीं है और हमें बचपन से यही समझाया गया और हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली और हमारे जो रिश्तेदार और मित्रगण जो भी है वो सिर्फ एक ही चीज सिखाते हैं और हमारे मस्तिष्क में ये कूट कूट कर भर दिया है कि जीवन में कुछ करना है तो बिल्कुल नंबर वन करना है। क्या करना है? हमको सबको पराजित करना है और सबसे आगे निकलना है। तो ये स्पर्धात्मक जो बुद्धि है वो हमारे दिमाग में ठूस ठूस कर भर दी गई है, उसको संचारित कर दी गई है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ईश्वर, वह ईश्वर मैया से परास्त हो गए। मैया अत्यंत द्रुत गोपियां, मतलब अत्यंत मतलब बहुत जोर से भागी यशोदा माँ और भगवान कृष्ण को पकड़ लिया, गोपिया अर्थात मैया यशोदा। तो बताते हैं कि हमें भी हमारे जीवन में भय होता है, हम सोचते हैं कि भागते भागते कोई हमसे आगे ना निकल जाए। बोलते हैं कि जब मैं भागू तो ऐसा भागू कि पीछे दूर दूर तक कोई हो तभी तो ठीक है, लेकिन कोई पास में भी हो तो डर लगता है कि कहीं आगे निकल जाएगा। तो सोचते हैं कि अगर आगे निकल भी गया तो कैसे उसको पकड़ूं और पीछे खींचूं। तो इस तरह का होता है। तो भगवान को मैया ने पकड़ लिया तो भगवान को आनंद आ रहा था। तो बताते हैं कि क्या अगर कोई हमसे आगे निकल जाए, कोई हमारे को पकड़ ले और पीछे कर दे, तो क्या हमें इसमें आनंद आएगा? बताते हैं संपूर्ण जगत में भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है आनंद के लिए, आनंदमय अभ्यास। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति आया जो हर भक्त से पूछने लगा, व्हाई हैव कृष्णा क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड, भगवान ने इस संसार का निर्माण क्यों कहा? तो सभी भक्त लोग बोलने लगे ना दुखालयम अशाश्वतम, ये जेल की तरह है, जीवों को ठीक करने के लिए कहा है, ये है वो है, इस तरह के उत्तर दे रहे थे। तो उन्हें मजा नहीं आया, संतुष्टि नहीं मिली, तो प्रभुपाद जी के पास चले गए और प्रभुपाद जी को बोले, स्वामी जी व्हाई हैव कृष्णा क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड। प्रभुपाद जी ने तुरंत भांप लिया, पहचान लिया उनको और कहा कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड फॉर एंजॉयमेंट। बड़ा खुश हो गया, बोला अरे आनंद के लिए, उपभोग के लिए बनाया है। तो एक मिनट प्रभुपाद जी ने पॉज किया और बोला नॉट योर्स कृष्णास एंजॉयमेंट। तो बोला तुम्हारे भोग के लिए नहीं बनाया, भगवान के भोग के लिए बनाया है। तो भगवान ने ये किया है और जीवों के आदान प्रदान के लिए और जिन आनंद की आकांक्षा से जीवों की उत्पत्ति की भगवान ने, ये सोचकर कि कब जीव अपने प्रेम के बंधन में मुझे बांधेंगे और मुझे अपने प्रेम की शक्ति से परास्त करेंगे। प्रेम की शक्ति में बहुत शक्ति है। तो परम सत्य जो है वो किसी से पराजित होकर भी आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम किसी भक्त से या किसी और से पराजित होकर आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाते। और हम सोचते हैं कि अगर भक्तों के संग में रहना है और विजयी होना है और दूसरे भक्तों को नीचे गिराकर अगर ऊपर उठना है और अगर इस तरह का भाव अगर हमारे मन में बाई चांस कहीं आ जाए तो ये भक्ति के ठीक विपरीत होगा, ये भक्ति के लिए नहीं होगा। और इसीलिए हमें सोचना चाहिए और ये दामोदर जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दामोदर, इस आपके महीने में मेरी यही प्रार्थना है कि कम से कम मेरे हृदय को शुद्ध करो, इतना बनाओ कि मैं दूसरे भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ता हुआ देखकर द्वेष न करूं और उनकी सहायता करूं, और कम से कम वो जो कर रहे हैं उनको करने के लिए मैं कुछ असिस्ट करूं कुछ, और उनको अगर मैं कुछ बोलूं भी तो मौखिक औपचारिकता से नहीं, पूर्ण सच्चे हृदय से। तो वास्तव में अगर हृदय के अंतःकरण में ये भाव आएगा तो हम भगवान हमारे पे बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी परीक्षा है हमारे लिए, ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आ जाओ, नहीं तो कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे से अच्छी सेवा कर लेता है और सेवा करके आगे बढ़ जाता है, भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तो हम तुरंत सोचते हैं अरे ये कैसे आगे बढ़ गया, ये तो मेरे 5 साल के बाद आया, ये तो मेरे 10 साल के बाद आया, ये कैसे आगे बढ़ सकता है। फिर हम भगवान बोलते रहे भगवान तुमने डेट बरोबर नोट नहीं किया क्या, कौन पहले आया था मालूम नहीं क्या तुम्हारे को, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं पहले आगे आया था, ये कैसे आगे बढ़ सकता है मुझसे। तो इस तरह की जो भावना आती है, तो इस तरह की चेतना के साथ अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण से दामोदर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे में बहुत अनर्थ है भगवान, इस हृदय के अंदर जो अनर्थ है उसका कोई गणित नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन प्लीज मैं आया हूँ आपकी भक्ति करने के लिए, मेरी इच्छा है लेकिन फिर भी माया का बड़ा बड़ा अटैक है मेरे पे, तो मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस तरह कीजिए कि मैं दूसरों को भक्ति करता हुआ देखकर उल्लासित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, मुझे अच्छा लगे। जैसे एक बार बता रहे थे कि जैसे राधा गोपीनाथ मंदिर में अगर कोई भगवान का दर्शन करता है तो उसको देखकर हम ये नहीं सोचते अरे तू क्यों भगवान का दर्शन कर रहा है, खाली मैं ही करूँगा, नहीं, अगर कोई दर्शन करता है तो हमें लगता है अच्छा है और लोगों को ले आओ और दर्शन कराओ, उसमें हमें खुशी मिलनी चाहिए, अरे भगवान को दर्शन कर रहा है और सबको भक्ति में लगाओ, आओ। चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमारा क्या गुरु है तारो है देश जावे नाथो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो इसलिए भक्ति का वास्तव में आस्वादन करना है तो भक्ति के तत्व को समझना बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए भगवान जो है वो अर्जुन से प्यार करते थे और एकलव्य से नहीं, लेकिन भारत में बड़ा बड़े प्रश्न पूछते हैं लोग, कह रहे हैं एकलव्य के साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, द्रोणाचार्य ने क्यों उसका अंगूठा ले लिया इस तरह से, लेकिन एकलव्य में जो थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं स्पर्धात्मक बुद्धि थी उसकी, वो चाहता था कि मैं अर्जुन को हरा के नंबर वन धनुधारी बन जाऊं, नंबर वन धनुधर बनूं मैं। और इस तरह की तो बताते कि वैष्णव जो है वो कॉम्पिटिशन नहीं करते, वो सर्व करते हैं, जो वैष्णव होते हैं वो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करने की उनकी इच्छा नहीं रहती है। और जब तक हमारे मन में कॉम्पिटिशन की इच्छा है, कॉम्पिटिशन की एक इच्छा हो सकती है कि अरे वो इतना अच्छा भक्ति कर रहा है, इतना अच्छा सेवा कर रहा है, मैं भी सेवा करूं, तो उस दृष्टिकोण से वो अच्छा है, लेकिन अगर दृष्टिकोण गलत है कि नहीं वो क्यों बन रहा है, वो क्यों व्यासासन पर बैठा है, अरे मैं बैठना चाहता हूँ, वो क्यों इच्छा गा रहा है, मैं गाना चाहता हूँ, अरे वो क्यों मैनेज कर रहा है, मैं मैनेज करना चाहता हूँ, इस तरह की अगर भावना अगर हमारे में आएगी तो समझना चाहिए कि हम भक्ति बराबर से नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कृष्ण ने एकलव्य को साइड में लिया और उसको उड़ा डाला। तो बताते कि भगवान किसको मारते हैं, भगवान सिर्फ राक्षसों को मारते हैं, तो क्योंकि भगवान ने स्वयं एकलव्य को मारा था, एकलव्य राक्षस था, उसको उड़ा दिया और वो भी युद्ध में नहीं मारा, भगवान सोचे युद्ध में मारूंगा तो फेमस हो जाएगा, बाहर लेके मार दिया, बोला जा बहुत हो गया, इसलिए अर्जुन को उन्होंने बचाया। तो बताते हैं कि भगवान भक्ति जो है, भक्ति का अर्थ है पराजय, भक्ति इज साइंस ऑफ बीइंग डिफीटेड। तो पराजय होने में अगर हमें आनंद आवे तो समझना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, भक्ति में हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। और भक्ति वो विज्ञान है जो हमें सिखाती है कि किस तरह हम परास्त हो सके। तब आगे और वर्णन आ रहा है दूसरा श्लोक, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मं मृजन्तम् करांभोज युग्मेन सांतक नेत्रम् मुहुशाशतम पत्री रेखांक कंठ स्थित ग्रैवं दामोदरम भक्तिबद्धम्। बताते रुदंतम, रुदंतम मतलब भगवान रो रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ईश्वर सर्वेश्वर षडेश्वर पूर्ण वो रो रहे हैं, किससे? मैया के डर से, मैया के भय से वो रो रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मं मृजन्तम्, और बार बार अपने जो आंखें हैं उसको मल रहे हैं, और इतना अश्रुपात हो रहा है उनके रोने की वजह से कि उनके जो नेत्र है, बताते हैं कि कराम भोज युग्मेन, कर मतलब हाथ से, अपने आंखों को मल रहे हैं, और इतना ज्यादा अश्रुपात हो रहा है कि सांतक नेत्रम, सांतक मतलब स आंतक नेत्रम। तो संस्कृत जो है बहुत ही विशेष भाषा है, और एक एक शब्दों का बहुत ही विशेष भाव होता है। जैसे एक शब्द होता है डर, डर मतलब होता है भय, भय होता है, तो भय मतलब कि किसी प्रकार का डर। जैसे कोई कह दे कि अरे आतंकवादी लोग आ रहे हैं, बंदूक लेके घूम रहे हैं, कभी भी अटैक हो सकता है, मार सकते हैं, या फिर कोई कहे कि जंगल में से शेर निकल गया है और शेर इधर आ गया है, तो डर लगता है, अरे बाबा शेर आ गया है, थोड़ा बच कर रहना पड़ेगा, अरे आतंकवादी आ गया, थोड़ा बच कर रहना पड़ेगा, तो वो कहते हैं भय, डर होता है वो। लेकिन हम जा रहे हैं और शेर सच में सामने आ जाए, तो जो सुना था वो तो याद आएगा, लेकिन जो शेर को देखकर और आतंकवादी को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होगा उसको कहते हैं आतंक, तो वो आतंक, इसलिए आतंकवादी कहते हैं कि वो लोग विज्ञापन नहीं करते, सीधा आके उड़ा देते हैं, इसलिए उनको आतंकवादी कहा जाता है। तो बताते हैं कि कृष्ण इतना डर रहे थे मैया से कि आतंक हो रहा था उनकी आंखों में, और उस आतंक की वजह से इतना अश्रुपात हो रहा था कि कृष्ण उसको अपने दोनों हाथ से रोकने का प्रयास कर रहे थे, रोक नहीं पा रहे थे। तो यशोदा माई क्या की, रस्सी लेके आई, बोली अभी इस कृष्ण को मैं उखल से बांध दूंगी, बस इसी उखल पर चढ़कर इसने मक्खन निकाला था, तो वो जो गाय को बांधने की जो रस्सी थी लेके आई, एक छोटी सी रस्सी, और कृष्ण को बांधने का प्रयास करने लगी। इस पर क्या हुआ, कृष्ण बंध नहीं पाए, रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ गई, फिर दूसरी रस्सी लेके आई, और ऐसे करते करते 9 लाखों गायों की जो भी रस्सी थी सारी रस्सियां ला दी। और बताते कि लीला में बहुत अच्छी तरह से वर्णन आता है कि रौप्य महोत्सव हो गया, मतलब पूरा रस्सियों का महोत्सव हो गया, हर तरह की रस्सी वहां पे अवेलेबल थी, और मैया उसको बांधने का प्रयास कर रही थी और कृष्ण बंध नहीं पा रहे थे। और क्योंकि मैया ने इतनी सारी रस्सियां लाई थी उनको बांधने के लिए, और इतनी सारी रस्सियों को गांठ मार मार कर भगवान को बांध रही थी, फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी, और ऐसा करते हुए मैया यशोदा बहुत थक गई, बहुत ही श्रम करना पड़ा उनको, और पसीने से तर बतर एकदम पसीना निकलने लगा। तो ये सोचकर कृष्ण को करुणा आ गई, कृष्ण को दया आ गई, और सोचा मैया को बहुत तकलीफ दे दी, अभी बंद जाना चाहिए, और मैया ने कहा अरे कृष्णा जरा बंद जा रहे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो 2 अंगुल रस्सी हमेशा कम पड़ गई, वो 2 अंगुल क्या है, 1 अंगुल है भक्त का प्रयास और 2 अंगुल है भगवान की कृपा। ये 2 अंगुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा हो जाए, दया हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो सब होगी, लेकिन पहले हमारा प्रयास बहुत आवश्यक है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो कृष्ण ने सोचा कि यार अगर मैं बंध गया, बंधने के पहले वो सोच रहे हैं, तो बोलते हैं कि मेरे दोस्तों का क्या होगा, हम लोग तो लूट मार करते हैं, मक्खन चुराते हैं, मेरा पूरा बड़ा गैंग है, और मेरे ना होने से मेरा गैंग अधूरा है, क्योंकि मैं तो गैंग का लीडर हूँ। तो वो नहीं बंधते हैं, लेकिन बाद में जब मैया को देखते हैं तो उनको करुणा आती है, कृष्ण बंध जाते हैं। तो बताते हैं कि प्रेम बंधन जो है वो सबसे शक्तिशाली बंधन होता है। और एक बार जनन्यास प्रभु बता रहे थे कि जब मैया यशोदा जब भगवान को बांधने की कोशिश कर रही थी, लाला को बांधने की कोशिश कर रही थी, तो इतनी रस्सियों के बाद भी वो बंध नहीं पा रहे थे, तो वहीं पे राधा रानी खड़ी थी छोटे बालक के रूप में, तो उसके जो बाल में बांधने का जो धागा होता है रिबिन, वो रिबिन उन्होंने निकाल लिया, और उसको गांठ मार के जब बांधा तो भगवान ने सोचा यार अब तो बंधना ही पड़ेगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की बात एक और दृष्टिकोण है जो जननिवास रूप बता रहे थे। तो बताते हैं कि हम जो है वो कभी किसी के बंधन में नहीं आना चाहते। किसी से अगर कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, किसी से कुछ संबंध स्थापित करते हैं, तो भी उनको अपने बंधन में लेने के लिए, ना कि उनके बंधन में बंधन के लिए, ये हमारा होता है। लेकिन भगवान देखो वो यशोदा माई के बंधन में बंध गए, और भगवान ने इतनी छूट दे के रखी है कि जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उसके प्रेम बंधन में बंध जाऊंगा, इतनी छूट दी है। और एक अगर किसी को आप बांध लो, बंदी बना लो, तो वो आपके अधीन हो जाएगा। तो भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। तो जब कृष्ण बन गए, माता यशोदा चली गई, तो उनके सखा और बलराम सब आ गए और बोलने लगे। तो बलराम ने कहा, अरे कृष्ण ये क्या हो गया? कृष्ण कह रहे, यार मैं बन गया हूँ, तुम लोग उधर मस्ती कर रहे हो, छुड़ाओ मेरे को। तो बोले, अच्छा मैं कुछ प्रयास करता हूँ, जाकर मैया से कहता हूँ कि तुमको छोड़ दे। मैया जानती नहीं तुम कौन हो। तो कृष्ण का, जाओ बताओ उनको, मैया को बताओ मैं कौन हूँ। तो जाके बलराम जी मैया से कहने लगे, मैया अरे आप जानते हैं कृष्ण कौन है? मैया ने कहा, कौन है? अरे क्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सभी कारणों के कारण है, सभी के स्रोत है, अनंत है, आदि पुरुष है, सभी कुछ उनसे ही आता है। तो मैया ने कहा, अच्छा तू कौन है? बोला, अरे मैं सभी अवतारों का स्रोत हूँ, मैं शंकरषण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैया ने कहा, अरे सारे अवतारों को क्या मेरे घर में जन्म लेना था? भाग यहाँ से। बोला, तेरे को ही बांध दूंगी उसके बगल में, ज्यादा आवाज किया तो। तो बलराम जी भागते हैं, कृष्ण को बोलते हैं, यार प्रयास किया, सफलता हाथ में नहीं लगी। भगवान का कोई बात नहीं, कम से कम प्रयास तो किया। तो बताते हैं कि यशोदा माई का ये जो बंधन है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं। ये प्रेम का जो रज्जु है वो बहुत शक्तिशाली होता है, वो ऐसा बांधता है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और सामान्य व्यक्ति ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि किस तरह के बंधन में भगवान बंध गए, क्योंकि एक जो बद्ध जीव है वह खुद तीन रस्सियों से जुड़ा हुआ है, तीन रस्सियों से बंधा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। इस तरह से बेड़ियों में वो जकड़ा हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से भगवान किसी के प्रेम बंधन में आ सकते हैं। और बताते हैं कि भगवान इस सब को विशेष रूप से कलयुग के जो जड़मती के जो लोग हैं उनकी बुद्धि को समझाने के लिए ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, ताकि वो हम उनसे मोहित हो सके और इन लीलाओं का वो विज्ञापन करते हैं। तो आगे चर्चा आती है, इति दृक्षो लीला भीरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तं आख्यापयन्तं तदीयेषितग्नेषु भक्तिर्जितैत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे। आख्यापयन्तं मतलब एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। तो ये विज्ञापन कर रहे हैं, बताते हैं कि कोई प्रोडक्ट का ज्ञान ना हो तो विज्ञापन करना पड़ता है ताकि उसका मार्केट बने। तो इति दृक्ष्व लीला भी आनंद कुंडे, और भगवान दामोदर ये लीला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दामोदर लीला जो है वो गोलोक धाम का एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, और वो करना चाहते हैं। तो बताते हैं कि भौतिक जगत में जो जीव है वो क्लेश के वशीभूत लहू लहान हो रहा है। आनंद की खोज में हम जा रहे हैं, लेकिन हम जानते नहीं सच्चा आनंद क्या है। प्रभुपाद जी ऑन द वे टू कृष्णा उस पुस्तक में लिखते हैं दैट एवरीवन इज आफ्टर हैप्पीनेस बट दे डोंट नो व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस। सभी लोग आनंद की खोज में हैं, लेकिन ये नहीं जानते सच्चा आनंद क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सच्चा आनंद चाहिए, ये मेरी पिक्चर देखो, ये ट्रेलर दे रहा हूँ मैं, ये मेरा पिक्चर है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, आनंद कुंडे। बताते कि पूरा का पूरा जो कुंड है वो आनंद से भरा हुआ है। आज प्रभु जी सुबह बता रहे थे कि सुख और आनंद में फर्क है, क्योंकि जहां पर सुख होता है वहां पर दुख भी होता है, लेकिन जहां पर आनंद है वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो भगवान की जो लीला है, भगवान कहते हैं कि ये जो मेरा आनंद का कुंड है, इसमें मैं जब लोगों को डुबोता हूं तो कोई इससे बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए चैतन्य चरितामृत कहती है, तारुण्यामृत पारावार तरंग लावण्य सार तटते आवर्त भावद्गम वंशीधानी चक्रवात नारिर मन तृणपात तहा के डुबाए न उद्गम। बताते हैं कि तारुण्य अमृत पारावार, कि भगवान कृष्ण का जो तारुण्य है, जो उनका सौंदर्य है, वह अमृत के समान है, वो अमृत के तुल्य है। और भगवान की जो जो सौंदर्य है, जो ब्यूटी है, वह एक तरंग के समान है, तरंग लावण्य सार ताट के आवर्त भाव उद्गम। और जो आवर्त होता है, आवर्त मतलब जो भावरा जो होता है, बवंडर जो होता है, जो जो पानी के अंदर चलता है, वो आवर्त में एक बार घुसने के बाद भाव उत्पन्न होते हैं। कि जैसे भगवान का जो वंशी ध्वनि चक्रवात, जो चक्रवात है, ये भगवान की जब वंशी बजती है तो इस तरह का चक्रवात आता है कि वो सबको ऊपर उठा लेता है। जैसे हमने देखा है कभी जो हरिकेन चक्रवात आता है, वो बवंडर इतना तेज घूमता है कि सब जो घास फूस और जो पत्ती वगैरह है उसको ऊपर उड़ा लेता है। तो बताते हैं कि वंशी ध्वनि चक्रवात जो भगवान का वेणुवाद है, वो चक्र की तरह है, और वो जब आवर्त आता है तो उससे भाव उद्गम, भाव उत्पन्न होते हैं भगवान के लिए, प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं। और वो क्या करता है, घास फूस को ऊपर उठा लेता है। और इसीलिए कहते हैं नारियर मन तृणपात, कि जो नारियां थी, जो गोपियां थी, उनका जो मन था वो एकदम पत्ते के समान था, तृण के समान था, और वो उसको ऊपर उठा लिया। तो बताता कि चक्रवात जो होता है वो केवल घास फूस को ऊपर उठा के लेके जाता है, लेकिन जो पत्थर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पत्थर को ऊपर नहीं उठाता। तो बताते कि वंशी वादन सुन के, वेणु वादन सुन के नारियों का मन जो है वो उसमें उड़ गया ऊपर, लेकिन हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि पत्थर के बने, कुछ नहीं होगा। भगवान की कई बार सोचते हैं कि भगवान का कब वेणु वादन सुनाई देगा, जैसे मैंने कहा अलाराम। लेकिन हम जिस अवस्था में अभी है, अगर रात को 12-1 बजे भगवान का वेणु वादन बज भी गया तो पहला प्रश्न पूछेंगे 12 बजे क्यों बजाया? अरे ये कोई टाइम है क्या बजाने का? मैं बताऊंगा भगवान, मैं कभी कभी फ्री रहता हूँ तभी आप बजाना, तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो बताते हैं कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, जब भगवान की वंशी बजती है तो भागने का मन नहीं करता, पत्थर की तरह मन है, और नाना प्रकार के अनर्थों से हमारा मन भारी है पत्थर की तरह। तो ये जो चक्रवात भी अगर आएगा तो उसमें हमारा मन उठ नहीं पाएगा, हम वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। तो एक बार एक डिवोटी ने मुझे एक SMS किया था, उसमें महाराज बता रहे थे कि यू कैन थिंक yourself ग्रेट, यू कैन गो ऑन थिंकिंग yourself ग्रेट unless and until यू सी दैट ऑल अदर fellow devotees आर गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड while यू remain इन दिस material वर्ल्ड ओनली। तो बताते हैं कि वेणुवादन काम तब करता है जब मन तृण की तरह हल्का होता है, जब घास के तिनके की तरह हमारा मन हल्का हो जाए तब उसको चक्रवात ऊपर उठा लेगा, और अगर पत्थर बन के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अगर तृण के समान अगर और इफ यू आर मोर हम्बल देन द ब्लेड ऑफ ग्लास, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, ऑफरिंग ऑल द रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड एक्सपेक्ट नन इन रिटर्न, देन ओनली वी कैन डू द हरे कृष्ण कीर्तन प्रॉपरली। तो बताते हैं कि जो कृष्ण रूपी सागर है इसमें बाउंडर जो है कृष्ण रूपी सागर में लाके पटक देता है, और जब पटकने के बाद वो आवर्त नीचे लेके जाता है और पूरी की पूरी तरह आनंद के कुंड में डूब जाते हैं। स्वघोषम निमज्जंतम आख्या पयंतम, और ये भौरा चलते रहता है उसके अंदर। और दामोदर लीला में भगवान ने बिल बोर्ड लगा के रखा है और नीचे लिखा है क्या, तदीयेषु भक्तिर्जितैत्वम, कि मैं भक्ति के द्वारा पराजित होता हूँ, भक्तिर्जितैत्वम नीचे लिख दिया है, भक्तिर्जितैत्वम, कि मैं भक्ति के द्वारा पराजित होता हूँ, भक्ति इज द बेस्ट, तो ये विज्ञापन कर रहे हैं। और इसके बाद आगे के दो श्लोक में श्रीपाद मुनि जो है वो दो वर मांग रहे भगवान से, और क्या कहते हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा न चाण्यम ऋणे हम वरेषदपि है, इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरास्तम कि मन्ये। वरम देव भगवान से वर मांग रहे हैं और कहते हैं कि भगवान मेरी इच्छा क्या है, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा, कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं कष्टों से फ्री होना नहीं चाहता, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं चाहता हूँ, मोक्ष नहीं चाहिए, और मोक्षम अवधिम वा, और मोक्ष से भी जो ऊपर है वैकुंठ भी नहीं चाहिए मेरे को भगवान। तो कई बार ऐसी प्रार्थना सुन के हम सोचेंगे कि यार ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, और वो कहते हैं इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम, कि सदा निरंतर मैं गोपाल का जो स्वरूप है उसको ही देखते रहूं, कि मन नहीं और कोई कामना नहीं है हमारे पास। तो इसका उदाहरण दे रहे सत्यव्रत मुनि, और इतना उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने दिया है, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक इतना उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है हमारे सामने है कि न जन्म न धनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है। बताते हैं कि भगवान ने कहा है कि न धनम न जन्म न सुंदरीम, तो हम जब ये श्लोक सुनते हैं तो कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, कोई ऐसा प्रार्थना कर सकता है क्या, और फिर कभी कभी साधकों से पूछते हैं कि यार उनको क्या लगता है ऐसा है क्या, तो यार मेरे को भी ऐसे लगता है। तो बताते साधकों के बीच में अगर ये चर्चा करेंगे तो ऐसे ही होगा, पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार निकाल के दिया है सामने, न धनम न जनम न सुंदरीम, तो अंदर लगता श्लोक तो परफेक्ट है, खाली न नहीं होना चाहिए था अंदर धनम जनम और एक सुंदरीम, वैसा अगर होता तो चलता था, ये न क्यों लगा दिया, ये कुछ कुछ गलती हो गई है। तो बताते हैं कि जो न जोड़ना बहुत बहुत कठिन हो जाता है, और फिर वो कहते हैं कि मन नहीं, अरे और मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो अगर कोई हमसे कहेगा कि मन, तो हम सोचेंगे कि मन, आप मुझसे पूछो मेरी क्या इच्छा है, पूरा एक बड़ा लिस्ट दे दूंगा, मैं बताऊं क्या कि मन मतलब क्या, बहुत सारा कुछ मेरे पास है, सब कुछ दे दो मेरे को, तो ये हमारी इच्छा है। पर वे कहते हैं कि मोक्षम अवधिम वा, कि मैं वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता, और मेरे को क्या चाहिए, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या अविरास्तम की मन, कि बस मेरे एक हृदय प्रांगण में है कन्हैया, बस खाली तुम वो तुम बैठे, बस मैं तुमको देखना चाहता हूँ, तुम्हारे उस गोपाल बाल का जो स्वरूप है वही देखना चाहता हूँ। तो एक बार प्रभुपाद जी ने ये कहते हैं कि मैं वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता, तो बताते एक बार प्रभुपाद जी ने भवानंद प्रभु से पूछा कि भवानंद प्रभु तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो भवानंद प्रभु बोले कि जो भगवान राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में भाव का अनुभव करे, भाव ले, उसे भवानंद कहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा तब तो तुम्हारा नाम भवानंद होना चाहिए, ये भवानंद क्यों है? तो बोले अच्छा प्रभुपाद जी आप ही बताओ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भव आनंद अर्थात ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत में जो आनंद का अनुभव करे वो भवानंद। तो बोले अरे यार ऐसा कैसा नाम दे दिया, बहुत डेंजरस नाम है, तो ये आध्यात्मिक नाम नहीं लगता है। तो फिर प्रभुपाद जी ने समझाया कि देखो भगवान के धाम में सभी लीला कर सकते हैं, सभी लीला के लिए स्थान है, केवल एक ही चीज है जिसके लिए वहां पर स्थान नहीं है, और वह है इन तड़पते हुए जो जीव है इस भौतिक जगत में उनको रिक्लेम करना, वापस ले आने की जो लीला है वो वहां पर नहीं हो सकती, वो लीला सिर्फ भौतिक जगत में हो सकती है। और इस लीला में तड़पते हुए भक्तों का जो उद्धार करे प्रचार के माध्यम से और भगवान को उनकी सेवा में लगाए और इस लीला में जो आनंद ले उसे कहते हैं भवानंद। श्रील प्रभुपाद की। तो बताते हैं कि भगवान नाम का प्रचार करने में लिए हमें सोचना चाहिए, इसलिए भक्त की एक इच्छा होती है कि मैं वैकुंठ नहीं भी जाऊंगा तो एक बार चलेगा। तो बताते हैं कि जो दूर से हमें गोपाल बालम का ये दृश्य दिखा दिया, अभी वो कैमरे को थोड़ा नजदीक ला रहे हैं, थोड़ा जूम कर रहे हैं, पता है ना कभी फोटो लेते तो लेके आते जूम करते हुए। तो आगे के श्लोक में कहते हैं इदं ते मुखं भोजं अत्यंत नीलं वृतं कुंडले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरास्तं अलं लक्षलाभे। इदं ते मुखां भोजं अत्यंत नीलय, बताते हैं कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, जो उनका रूप है वह कैसा है, अत्यंत नीलय, वो एकदम नील नील वर्ण है उनका, ब्लू कलर है। और भगवान गोपाल की छवि मन में हो तो बताते हैं कि अत्यंत नीलय वृतम कुंतलय स्निग्ध रक्तस्य गोप्या, और कुंतलय मतलब बाल, जो केश होते हैं उनके काले घने बड़े आकर्षक घुंघराले बाल, ये भगवान के बाल है। तो राम प्रभु क्लास में बताते हैं कि उनके कोई मित्र थे राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने बहुत साल पहले उनसे एक घटना बताई थी, सत्य घटना है कि एक लखनऊ में, जैसे आज लखनऊ के टेंपल प्रेसिडेंट आए थे, लखनऊ में एक मुशायरा चल रहा था, मुशायरा मतलब जहाँ पर शेर शायरी होती है, और वहाँ पे जिस आयोजक जो था उसने आयोजन करने के बाद एक शर्त रखी थी कि जो कुछ भी इसमें शेर सुनाएगा उसको लास्ट में कहना पड़ेगा काफिर है वो जो कायल नहीं इस्लाम के, क्योंकि ज़्यादातर लोग थे। तो एक बार एक व्यक्ति थे ब्राह्मण परिवार से थे लेकिन शेरो शायरी में उनका इंटरेस्ट था, तो वो भी उसमें भाग लेने के लिए पहुंच गए, लेकिन जब भाग लेने पहुंचे तो पता चला कि ऐसा बोलना पड़ेगा, तो सोचा ऐसा कैसे कहूँ, अपराध हो जाएगा ये भगवान के प्रति। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, कुछ सोचकर थोड़ा एडजस्ट कर दिया अपना श्लोक को, और वो आए स्टेज पे और आके कहने लगे लांस गेशु है मानिंद मेरे घनश्याम के काफिर है वो जो कायल नहीं इस्लाम के। तो बताते कि इसका मतलब क्या है, बता रहे कि उर्दू के अंदर कई सारे जो शब्द होते हैं अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं, तो एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं लाम, वो इस तरह से लिखा जाता है जैसे लामड़ा होता है इंग्लिश में, इस तरह से लाम होता है। तो उन्होंने कहा लाम से गेशु है, मतलब भगवान के जो काले बाल है गेशु है, ये कैसे है, इस तरह से घुंघराले है, लाम से गेशु है मानिंद मेरे घनश्याम के और काफिर है वो जो कायल नहीं इस लाम के। इस भगवान के जो बाल है अगर उनके अगर आप भक्त नहीं हो तो आप काफिर हो। तो इस तरह से उन्होंने एक श्लोक की रचना कर दी। तो आगे कहते हैं मुहुस चुंबितम बिंब रक्ता धर्म, कि भगवान का जो मुख था वो बार बार गोपियों के द्वारा और यशोदा माता के द्वारा चुंबित हो रहा था, और वो चुम्बन से जो उनके जो जो होठों की लाली थी वो भगवान के गाल पे आती थी, और एक बिंब जो फ्रूट होता है उसकी तरह भगवान के जो गाल दिख रहे थे। और वो कहते थे कि ये जो स्वरूप है जिस पर माता ने और गोपियों ने चुंबन किया है, जो लाल बिंब फ्रूट की तरह दिख रहा है मुझे, यही मनस्त मनस्या विरास्तम अलम लक्ष्य लाभ, बस मेरा लक्ष्य यही है कि ये भगवान का जो स्वरूप है बाल स्वरूप जो है वो मेरे हृदय के प्रांगण में हमेशा ही बस खिलता रहे और मैं उसका दर्शन करता रहूं। तो इस तरह से वे बताने लगे। फिर आगे के दो श्लोकों में वो अपने उद्धार की बात ला रहे हैं। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि अरे भगवान मैंने इतना कुछ कह दिया, अभी मेरा उद्धार तो करो। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जला भिमर्णम कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि दीनं बतानु ग्रहणेश मामज्ञ मे अक्षितृष्य। बोले नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। बोले अरे देव आपको नमस्कार है। और बहुत तरह से भगवान का संबोधन हुआ यहाँ पर, तो कहते हैं कि मुझे बचाओ मेरा उद्धार करो। तो गोपाल बोलते हैं कैसे करो तुम्हारा उद्धार, मैं तो छोटा सा बालक हूँ। तो बोले नहीं नमो देव, तुम बहुत बड़े देवता हो, तुम बहुत बड़े व्यक्ति हो, तुम दामोदर हो। तो बोले लेकिन मैया ने तो मेरे को बांध दिया है, मैं तो बंध गया हूँ, मैं कैसे तुम्हें तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ। तो बोले नहीं आप दामोदर हो और भक्त का जो प्रार्थना है उसका कभी विफल नहीं होने दोगे, इसलिए आप मेरा उद्धार करो। तो बोला लेकिन मैं कैसे, मैं तो वैकुंठ में रहता हूँ, तुम्हारा उद्धार करना कैसे हूँ। तो बोले नहीं अनंत, तुम सर्वव्यापी हो। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, बोलते अनंत हो तुम सर्वव्यापी हो, हृदय में भी हो, तुम बराबर मेरा उद्धार कर सकते हो। तो क्या लेकिन मेरे को देवताओं से कंसल्ट करना पड़ेगा, पहले पूछना पड़ेगा तुम्हारा उद्धार करूँ। तो बोला नहीं तुम विष्णु हो, विष्णु सारे के सारे देवता तुम्हारे पास ही आते हैं अपना उद्धार करने के लिए। तो बोले कि देखो मैं इस दुख के जला भी मग्न में डूबा हुआ हूँ, तो आप मेरा उद्धार कीजिए। तो बताते कि आप प्रभु हो और ब्रह्मा जी ने जैसे हिरण्यकश्यप का वरदान दे दिया, तो नरसिंह भगवान आए और उसको मार के चार चित्त कर दिया, सुला दिया उसको बराबर से। और फिर ब्रह्मा जी के पास जाके भड़क गए होंगे, बोले अरे ब्रह्मा जी किससे पूछ के तुमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दिया था उसको। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसा वरदान दोगे तो अपने चार मस्तिष्क की चार बुद्धि का बराबर प्रयोग करना और मुझसे पूछ लेना पूरे भर देने के पहले। तो इतना उनको डांट दिया उन्होंने नरसिंह भगवान ने। तो बोले कि आप प्रभु हो, आप कर सकते हो, और आप खाली कृपा दृष्टि वृष्टानि दीनम बताऊँ, मैं बहुत दीन हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं, और आप मेरे पे अपनी कृपा दृष्टि डालिए। तो बाद में भगवान कहेंगे अच्छा ठीक है इतना सब कुछ तुमने कह दिया, लेकिन मैं मुक्त करता हूँ, पर उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड होता है मेरा मुक्त करने का, हर किसी को मुक्त नहीं करता मैं, तुम्हारा स्टैंडर्ड है क्या मुक्त करने का बताओ। तो बोलते सत्यव्रत मुनि क्या भगवान आप मेरे को ऐसा धोखा नहीं दे सकते, ऐसा चक्कर नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने इतिहास में गए गुजरे लोगों का भला नहीं किया है, मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा लिख के रखा है मैंने कि किस किस लोगों का आपने भला किया है, और मैं कई उदाहरण जानता हूँ और आपको उदाहरण दे सकता हूँ। तभी वो उदाहरण दे रहे भगवान को कि क्यों आप मेरा उद्धार करो। कहते कुबेर आत्म जो त्वया मुचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो क्षेत्रहो मेस्ति दामोदरेह। बोले कुबेर आत्मजौ, मतलब कुबेर के जो दो लड़के थे नल कुबेर और मणिग्रीव, आपको उन्होंने आपने उनको मुक्त कर दिया। और कहते कि क्या उन्होंने तपस्या की थी, क्या सोलह माला का जप किया था उन्होंने, कुछ नहीं किया था, दारू पी के पागल थे और नृत्य कर रहे थे मंदाकिनी गंगा में, वो भी नंगा होकर। बोले ऐसे लोगों का, ऐसे पतित लोगों का आपने उद्धार किया है और मेरे पास रिकॉर्ड है, और उनको भी आपने भक्ति दे दिया तथा प्रेम भक्ति। तो बोला यार मैं तो चाय पीना भी छोड़ दिया हूँ, सोलह माला करता हूँ, बाहर कुछ खाता पीता नहीं हूँ, भगवान को भोग लगा के खाता हूँ, इतना सब करता हूँ, क्या मेरा उद्धार नहीं करोगे क्या, कम से कम मेरा तो उद्धार कर दो। तो मेरे जीवन में भी अवश्य आशा की किरण है कि जब आपने जगाई मधाई और ऐसे लोगों का उद्धार कर दिया तो मेरा उद्धार आप क्यों नहीं करोगे भगवान। तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये आपके ऊपर कि आप मेरा उद्धार करोगे, तो कृपया मेरा उद्धार करो और मुझे प्रेम भक्ति दो। देखो भगवान से जब मांगना चाहिए तो छोटा मोटा चीज नहीं मांगना चाहिए। बताता जैसे एक बार एक बूढ़ी औरत थी, वो जा रही थी तो बड़ा भारी गट्ठर उसे उठाया नहीं जा रहा था। तो वहां पर एक पुलिसमैन आया, उसने कहा मैया बता क्या सेवा करूं। तो बोला यार एक गट्ठर उठा के मेरे सिर पर रख दे बस। उसकी गाड़ी में वो घर जा सकती थी लेकिन नहीं गई। तो बताते भगवान के पास हम जब आए तो क्या प्रार्थना करना चाहिए वो भी हमको समझ में आना चाहिए, नहीं तो भगवान से आके बोलोगे भगवान मेरे को परीक्षा में पास कर दे, भगवान मेरे को नौकरी दिला दे, मेरे को छोकरी दिला दे, मेरे को ये कर दे, मेरे को वो कर दे। तो ये सब खुजली की तरह होता है कि जैसे एक एक करके खुजली आती है, हम खुजाते रहते हैं, तो थोड़ा एक बार खुजली आई फिर खुजा दिया, भगवान के पास गए, भगवान अभी मैं दसवीं में आ गया हूँ, दसवीं की परीक्षा दे रहा हूँ, टेंथ स्टैंडर्ड में हूँ, प्लीज पास कर दो, भगवान का तथा हो जाए पास हो जाए। तो पास हो गया, एक बार खुजली कर दी, फिर दूसरी बार खुजली, अभी मैं ट्वेल्थ में हूँ, दूसरी बार खुजा दिया भगवान ने, बोला जा फिर बीकॉम में हूँ, फिर मेरी शादी करा दो, फिर मेरे को नौकरी दिला दो, मेरा एक अच्छा घर करा दो, मेरे को मिडिल ईस्ट में भेज दो, मुझे अच्छी नौकरी करा दो, मेरे पास एक अच्छी कार दिला दो, इस तरह की खुजली अगर करते जाएंगे तो कोई लाभ नहीं है, और खुजली करते करते वो नासूर बन जाएगा। तो भगवान के पास क्या मांगना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे आज सुबह ही प्रभु जी बता रहे थे दोपहर को कि जेल में जेलर गया और सबसे पूछा क्या चाहिए, देखने का कह रहे यार ये हमारा जो पंखा है वो बराबर नहीं चलता। बोला ठीक है सब पंखे बंद कर दो और चालू कर दो, दूसरा पंखा दे दो इनको अच्छा वाला। फिर दूसरा व्यक्ति बोला अरे हमारे एक ही कमरे में 10 लोगों के रहने की जगह है, 15 जनों को ठूस के रखा है। बोला ठीक है सभी कमरे में 10-10 लोगों को रख लो। इस तरह से प्रभु जी बता रहे थे सुबह, यहाँ भी बताया रहेगा। तो बाद में एक व्यक्ति चतुर था, उसने कहा मेरे को जेल से बाहर निकाल दो। बोले सारे कष्ट उसी लिए है क्योंकि मैं जेल में हूँ, अगर जेल से बाहर निकल गया तो कष्ट कहाँ पे रहेंगे, तो हमको इस जेल से बाहर जाना है, नहीं तो उसी जेल में बैठे रहेंगे, बोलेंगे ये लाओ सुख लाओ वो लाओ वो लाओ सब लाओ, और सब ला के इधर ही पड़े रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम यही दुस्तारे खलु विस्तारे कृपया पाहे पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। शंकराचार्य कहते हैं अरे गोविंद का नाम ले, बस गोविंद के नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है, बाकी कहीं पे कुछ नहीं है। तो बताते हैं कि मेरे को दो तो क्या मांग रहे सत्य मुनि के, प्रेम भक्ति दो मेरे को। तो बताते भाई भक्ति के भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे घी है, घी का भी बहुत प्रकार होगा, एक घी होगा सादा घी होगा, एक डालडा घी होगा, एक डायनामिक्स का होगा, एक अमूल का होगा, ऐसे दूध है अलरावा भी होगा अलैन होगा ये होगा वो होगा। तो हम एक पर्टिकुलर ब्रांड हमको पता है कि नहीं यही चाहिए मेरे को। तो बोलते हैं कि बहुत सारी भक्ति आप दे सकते हो, मुक्ति भी दे सकते हो, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, वो जो कुबेर के बच्चों को दिया था ना कौन सा वाला तथा प्रेम भक्ति, वो वाला भक्ति चाहिए मेरे को, दूसरा नहीं चाहिए। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा भगवान, अगर मांग रहा हूँ आपसे कुछ और देना ही है तो वो वाला भक्ति मेरे को दो भगवान। तो बोलते वो ही जो कुबेर के लड़के को दिया था ना तथा प्रेम भक्ति सो काम में प्रयच्छ न मोक्ष, मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, ग्रहों में स्थित दामोदर हे दामोदर आप तो भक्त वत्सल हो आप मेरे को वही भक्ति दे दो। तो इस प्रकार अगर हम अयोग्य भी होंगे तो भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दामोदर कृपा करो मुझे भक्ति दो, मेरे हृदय के जो अनर्थ है वो दूर करो, तब भगवान अवश्य अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे, भगवान बहुत ही कृपालु हैं। अब आगे जो है वो लास्ट श्लोक में सत्यव्रत मुनि कंक्लूजन दे रहे हैं और उसके बाद हम भी कंक्लूड करेंगे। बहुत देर हो गई। कहते हैं नमस्ते स्तुदामने सुरदिति धामने तदीयो दरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यम्। फिर नमामि से शुरू किया था और फिर नमस्ते कहते हैं नमस्ते स्तु दामने, दामने मतलब वो रज्जू वो रस्सी, बोलते उस रज्जू को प्रणाम है जिस रस्सी ने आपके उदर को बांध दिया और आपके उदर जिसमें सारे की सारी सृष्टि रहती है। जब भगवान ने लाला ने मिट्टी खाई यशोदा मैया ने देखा तो पूरा का पूरा सृष्टि अंदर दिखाई दिया उसको, और खुद भी दिखाई दी अंदर देखते हुए भ्रमित हो गए बोले अरे क्या हो रहा है। तो भगवान की जो जो बताते हैं कि जब भगवान वराह के रूप में आए थे तो उनका एक एक रोम छिद्र इतना बड़ा था कि उसमें समुन्द्र समा जाता था, इतना बड़ा उनका विशाल विशाल का रूप था। तो बताते हैं कि उस रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ कि उस रस्सी का कितना भाग्य है, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, कि इतना भाग्य है कि उसने आपके पेट को बांध दिया आपके उदर को बांध दिया है। और कहते हैं कि वो रस्सी को प्रणाम करने के बाद स्फुर दीप्ति धामने कि वो जो ज्वाजल्यमान रस्सी है उसको मैं प्रणाम करता हूँ और आपके उदर को भी प्रणाम करता हूँ कि जिस उदर ने उस रस्सी से बंधना स्वीकार किया। दीप्ति धामने तदीयो दरायाथ विश्वस्य धामने के वो जो सारा का सारा विश्व आपके उदर में समाहित है उस उदर को एक छोटी से रस्सी ने बांध लिया, तो किस प्रकार की लीला कर रहे हैं। तो बताते हैं कि सत्यव्रत मुनि ने ये रचना लिख दी और रचना लिखने के बाद वो सोचने लगे कि यार इतना सब कुछ मैंने कह दिया लेकिन भगवान इसको स्वीकार करने चाहिए। जैसे अगर हम कोई पिटीशन लिखते हैं तो पिटीशन में अगर कुछ गलती हो गई, कुछ गलत शब्द लिख दिया या कुछ इधर उधर लिख दिया तो पिटीशन रिजेक्ट हो सकता है। तो सत्यव्रत मुनि ने सोचा कि यार मैं तो महान भक्त नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ और इतना सब कुछ मैंने लिख दिया लेकिन मेरी पिटीशन अगर रिजेक्ट हो गई तो क्या हो जाएगा। तो बताते हैं कि कभी कभी जब पिटीशन सबमिट करते हैं कोर्ट में तो बोलते हैं ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लिखा, ये हस्ताक्षर मतलब साइन यहाँ पे बराबर नहीं किया, इधर साइन करना था उधर क्यों किया, इधर स्टेपलर मारना था उधर क्यों मारा, स्टैंप इधर मारना था उधर क्यों मारा, चलो रिजेक्ट कर देते हैं। तो बोलते हैं कि मेरा रिजेक्ट नहीं हो जाए तो इसीलिए जब पिटीशन सबमिट करते हैं तो उसके साथ में कुछ और देना पड़ता है, सभी लोग जानते हैं कि कई बार जब सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो साथ में कुछ लेकर जाते हैं, जैसे मराठी में बोलते हैं कायदिया नहीं चाला, मतलब कुछ दे और आगे जाओ, कायदिया नहीं चला मतलब कायदे से चलो, और उसका मतलब ये कायदिया नहीं चाला कुछ दे और आगे चलो। तो बोलते हैं कि जब सरकारी दफ्तर में जाओ तो प्रसाद लेके जाना चाहिए, और प्रसाद के बहुत मतलब है, एक होता है प्रसाद जो ऊपर से दिया जाता है और एक होता है महाप्रसाद जो नीचे से दिया जाता है। तो नीचे से देने के लिए सत्यव्रत मुनि भी प्रयास कर रहे हैं, कहते हैं कि इतना सब कुछ मैंने लिख दिया, मेरी पिटीशन रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो न रिजेक्ट हो उसके लिए सोचे कि अब मैं क्या करूं, कृष्ण के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ मेरे को ऐसा महाप्रसाद देना पड़ेगा कि कृष्ण उसे स्वीकार करेंगे और उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बताते कि कृष्ण के लिए सबसे बड़ा वीकनेस क्या है, राधा रानी। तो बोले कि कुछ मैं राधा रानी के बारे में लिख देता हूँ लास्ट में दो लाइनों में, तो भगवान बोला बाकी जो मैंने कुछ कहा है वो सही हो कि ना हो, लेकिन ये बात सही है कि नहीं भगवान बताओ। नमो राधिकाई त्वदीय प्रियाय, कि राधा रानी तुमको अतीव प्रिय है कि नहीं बोलो भगवान। भगवान मना कर सकते हैं क्या कि राधा रानी मुझे प्रिय नहीं है? तो बोले अरे राधा रानी तुमको प्रिय है, आपको बहुत कर प्रिय है, आप मना नहीं कर सकते, तो मेरा पिटीशन बोनाफाइड है, ले लो स्वीकार करो। तो बोले कि एक तो राधा रानी प्रिय है और दूसरा क्या प्रिय है? नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यं, लीला प्रिय है, रास लीला प्रिय है भगवान को। एक राधा रानी प्रिय है और एक रास लीला प्रिय है। तो बोले ये दो चीज प्रिय है तुमको, तो ये दोनों का एक एनवलप बना के भगवान को दे दिया, ऊपर से पकड़ा दिया, बोला ये ले लो, तुमको राधा रानी प्रिय है और रास लीला प्रिय है, और इसकी मैं तुम्हें कसम देता हूँ नमो अनंत लीला ये देवाय तुभ्यं। तो बोला कि अभी मेरा केस जो सील कर दो, बस लगा दो, एक मुहर लगा दो उसके ऊपर, लॉक कर दो और आगे रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। तो वास्तव में लास्ट में फैक्टर जोड़ दिया उन्होंने कि ये आपको राधा रानी तो प्रिय है ही ना भगवान, तो आगे मैंने जो कुछ भी कहा है सांस लोकों के अंदर वो सही है कि नहीं है मालूम नहीं, लेकिन एक बात सही है जो मैं जानता हूँ कि राधा रानी आपको अति प्रिय है, और अगर राधा रानी कृपा करेगी तो आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। इसलिए जी बता रहे थे कि राधा रानी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, वो जो कृपा करती है तो ठाकुर जी को कृपा करनी ही पड़ती है, वे बच नहीं सकते उससे। तो बताते हैं कि आप कृपा कर दो, अब राधा रानी का नाम आ ही गया तो भगवान भी सोचेंगे यार इसका उद्धार करना ही पड़ेगा, ज्ञानों लोग राधा रानी का नाम लिख के दे दिया। तो सनातन गोस्वामी पास बताते हैं कि भोजन जब परोसा जाता है तो भोजन के अंत में जो होता है वो मिठाई दी जाती है, डेजर्ट आइटम दिया जाता है। तो ये जो लीला है भगवान की, जो दामोदर अष्टकम जो इन्होंने लिखा है, ये बहुत ही भोजन के समान पौष्टिक है, बहुत ही स्वादिष्ट है, सुस्वादिष्ट है, मधुर है, मीठा है, लेकिन इसमें मीठा में जो डेजर्ट वाला पार्ट है वो दो लोग लास्ट दो लाइन में उन्होंने लिखा है नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाए, कि डेजर्ट दे दिया तुमको खाने के लिए। तो इतना जो मिठास जो उनको परोस दिया है तो भगवान कभी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो बताते हैं कि हमको भी दामोदर अष्टकम से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह से हम भगवान से प्रार्थना करें, किस तरह हम ये समझे कि ये जो लीला है ये नित्य है, ये भौतिक नहीं है, ये अनंत है और ये चलते ही रहती है, चलते ही रहती है, चलते ही रहती है। और इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि इस लीला को अगर कोई रोज गाएगा तो भगवान को तुरंत पाएगा, क्योंकि उससे राधा रानी प्रसन्न होगी, भगवान प्रसन्न होंगे। और हमारा जो ये जो कथा करने का भी जो तात्पर्य है वो यही है, सिर्फ दो कारण है इसके, एक तो ये कि हम हमारे हृदय का शुद्धिकरण करना चाहते हैं और दूसरा कि भगवान के चित्त को आकर्षण करना चाहते हैं, कि हम अगर भगवान के चित्त को आकर्षित करें तो ही हमारे जीवन की सफलता है। और इसीलिए हमें समझना चाहिए, और अभी दामोदर का महीना आ रहा है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए रोज ये बड़े ही प्रेम से, तथा प्रेम भक्ति, बड़े ही प्रेम से, हालांकि हमारे में बहुत अनर्थ है लेकिन हमारे लिए आशा की किरण है कि अगर सबका उद्धार किया है भगवान तो मेरा उद्धार क्यों नहीं करोगे, लेकिन चैलेंज के साथ नहीं, एकदम सबमिट होते हुए, क्योंकि जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो भगवान की कृपा आती है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो जाते हैं। जिस तरह से हम जितना अंदर घुसेंगे उतने ही भगवान की हमारे पे कृपा आएगी, और जितना ही नम्र बनेंगे, जितना ही ये जो श्लोक है इसको चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे, प्रभुपाद जी ने बताया था कि ये श्लोक को अपने गले के अंदर इधर खुदवा के बांध के रखना चाहिए, कौन सा, प्रणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तन्य सदा हरि, कि ये जो श्लोक है ये सारे के सारे शास्त्रों का निचोड़ है। और जो शिक्षा अष्टकम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, बताते कि महाप्रभु श्री चैतन्य के मूवमेंट में आ गए हैं तो भगवत धाम जाना निश्चित है, कोई दो राय नहीं है उसके अंदर, कि एक बार महाप्रभु की के मिशन में आ गए हैं तो भगवत धाम जाना स्वाभाविक है। हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी, कितनी तीव्रता के साथ, तीव्रेण भक्ति योगे, किस तरह से हम कितनी तीव्रता से इसको अपनाएं, ये नहीं सोचे जैसे यशोदा मैया ने जो पद्म गंधा गायों का जो दूध था भगवान के लिए, फर्स्ट क्लास, हम कभी ये ना सोचेंगे यार बहुत टाइम है अभी, तो मैं पहले अपना नौकरी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और सब होने के बाद जब कोई शक्ति रहेगी नहीं, जैसे शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम पलितम टुंडम दशानुवहिता जाति टुंडम वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है अंगम टुंडम मुंडम मुंडम ऐसा सोचना, लेकिन बड़ा खतरनाक मतलब है इसका बहुत। बोलते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम, मुंडम मतलब हमारा जो बाल होता है वो गिर जाता है, अंगम गलितम जब बुढ़ापा आता है ना तो अंग गल जाता है पूरा का पूरा, चर्बी रहती नहीं है कुछ, सब निकल जाता है, खाली हड्डी बचती है। अंगम गलितम पलितम, पलितम मतलब गिर जाता है, और जो काले घने घुंघराले रेशम वाले जो हमारे बाल है वो सब पता नहीं किधर चले जाते हैं, कांच में हम देखना पसंद नहीं करते, कह रहे क्या हो गया करके, तो वो गिर जाते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशान विहीन जातम कुंडम, तो दशान विहीन जातम कुंडम मतलब कि हमारे जो 32 खिलाड़ी है अच्छे, हमारे दांतों में जो एकदम चमक रहे हैं, मुस्कुराते हैं तो उसको देख के तो कई बार अच्छा लगता है और मुस्कुराते हैं देख के, तो एक 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 करके विकेट आउट हो जाता है उनका, सब निकलते जाते हैं, 32 के 32 प्लेयर दांत में से मुंह में से बाहर हो जाते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशान विहीन जाति तुंडम वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम, उसका चलने को नहीं होता है, तीसरा पैर आ जाता है उसके पास, एक डंडा लेके चलना पड़ता है, तो डंडा लेके चलता है बुढ़ापे में। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी जो आशा का जो पिंड है वो छूटता नहीं हमारे से, बहुत तकलीफ होती है, बहुत सुन लिया लीलाएं, बहुत सुन ली हरिनाम, बहुत ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वहीं का वही है, लंगर अटका हुआ है, नाम चल रही है लंगर अटका, जब तक ये लंगर ही नहीं निकालेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। और बताते कि भगवान जो है वो अपने नित्य धाम के अंदर बैठे हुए हैं, आराम से मुरली बजा रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, लेकिन उस भगवत धाम को छोड़कर, उस नित्य धाम को छोड़कर इस नैमित्तिक धाम में क्यों आते हैं, इस कचड़े की पेटी में क्यों आते हैं भगवान, वो हमें आकर्षित करने के लिए आते हैं, कह रहे मेरे बद्ध जीवो यहाँ पर सो नहीं, जागो उठो चलो मेरे साथ, देखो आनंद कुंड में मैं तुमको ले जाता हूँ, वहां तुमको डुबोता हूँ, कितना मजा आएगा तुम्हारे को वहां पर। तो इस तरह कहने के लिए भगवान अपना जो नित्य धाम छोड़कर नीचे आते हैं लीला करने के लिए, और हमारा हृदय आकर्षित करने के लिए कि आओ लेके जाता हूं मैं तुमको चलो मेरे साथ, और फिर भी हम आने के लिए रेडी नहीं है। तो बताते हैं कि जब द्रौपदी भी जब उनका चीरहरण हो रहा था तो बहुत एक गई पांडवों के पास, गई धृतराष्ट्र के पास, गई द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह सबके पास चले गए, अपने हाथ से खींचने लगी, दांतों से खींचने लगी, और जब पूरी तरह कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई तो द्रौपदी ने सिर्फ गोविंद गो बोला था, पूरा गोविंद भी नहीं बोला था, और भगवान आ गए वहां पे। तो बताते हैं कि जितना ये यथाम हम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम, ये श्लोक हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जितना मैं कुछ करूंगा भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, अगर अच्छे प्रेम प्रेम भक्ति चाहेंगे भगवान प्रेम भक्ति देंगे, बोलेंगे मेरे को बंगला चाहिए कार चाहिए भगवान वो देंगे, भगवान दे देते हैं, पर हमको खुजली नहीं करनी है, हमको क्या करना है, हमको भक्ति करनी है, तो हमको खुजली से ऊपर उठने का और भक्ति करने का, और अगर सही तरह से भक्ति करेंगे और भक्ति की सेवा करेंगे, जैसे गौरांग प्रभु ने यहीं पे कहा था, मैं वापस उस चीज को दोहराना चाहता हूँ, सुखकर प्रभु ने एक प्रश्न पूछा था कि चैंटिंग कैसे करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा विषय है, इस पर हम सेमिनार देते हैं, पर कहा कि चैंटिंग का जो मतलब है वो हरे कृष्ण महामंत्र का क्या मतलब है कि हे कृष्ण हे राधा रानी कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो बताते हैं कि जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमको सेवा देते हैं, लेकिन जब सेवा आती है तो हम भाग जाते हैं सेवा से डर के, अरे सेवा आ गई भागो भागो यहाँ से, जैसे होटल में गए बोले डोसा लाओ, वेटर लेके आया बोला भागो, फिर लेके आया लेके आओ भागो, वेटर एक चापट लगाएगा बोले क्या कर रहा है, डोसा मांग रहा है मैं ला रहा हूँ तू मेरे को डोज दे रहा है, तो भगवान बोलता है कि अरे सेवा मांग रहा है तू मेरे से, मैं तेरे को सेवा दे रहा हूँ तू मेरे को डोज दे रहा है, भगा रहा है बोलता नहीं, तो हम सोचते कि नहीं नहीं अभी तक हम उतने उस स्तर पर पहुंचे नहीं है, तो भगवान मैं जो हूँ बहुत पतित हूँ, बहुत पापी हूँ, बहुत नीचे हूँ, मुझे अपनी सेवा में मत लगाओ, इनको अपनी सेवा में लगाओ, ये दूसरे प्रभु जी बहुत महान है, ये बहुत अच्छे भक्त है, इनको अपनी सेवा में लगाओ, मेरे को बाद में लगाना। तो अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो साक्षात्कार नहीं होगा, जो रियलाइजेशन है जो साक्षात्कार है वो सेवा से आता है। तो भक्ति में बहुत ही कोऑपरेशन से अगर हम सेवा करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, और यही कोऑपरेशन हमसे भगवान दामोदर चाहते हैं कि किस तरह से हम उनको पूरी तरह से समर्पित हो जाए, और इस तरह से समर्पित हो गए और हम कृष्ण से जुड़ जाएंगे, लसत कुंडलम परम पदम भूषणम भूषणांगम, कि हम अगर भगवान से जुड़ गए तो हमारा ये जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो पूरा का पूरा ये एग्जिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अस्तित्व जो हमारा है वो हमारा जो है वो सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर कथा को विराम देना चाहूँगा, मेरे जो कुछ भी गलतियाँ हो गई है कृपया मुझे माफ़ करना, और ये जो भी मैंने जो भी क्लास कुछ भी कहा, ये सिर्फ गौरांग प्रभु ने जो कहा था उसको दोहराने की मैंने कोशिश की है, तो हम उसके लिए गौरांग प्रभु को हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री रसामृत प्रभु की जय।